نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. آج ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ محمد شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 1 سے 19 تک، 26واں پارہ ہم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، ضائع کر دیے ان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے. یعنی آیت کا آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس کو الذین کفروا سے شروع ہوئی. ایسے آیتیں اکثر کب شروع ہوتی ہیں؟ جب وہ پیچھے سے کوئی بات کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر کہا جاتا ہے الذین، یعنی الذین کنیکٹنگ ناؤن ہے. تو جب کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے آیت پچھلی آیت سے، کوئی بات چل رہی ہوتی ہے اور پچھلی آیت سے ایک ربط چلا آ رہا ہوتا ہے، ایک کنیکشن ہوتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورت شروع ہی اس طرح سے ہو رہی ہے، الذین کفروا سے، جو کہ ایک ڈفرینٹ ہمیں ملتا ہے سٹائل. اس سے پہلے ہم نے سورتوں کو دیکھا تھا تو وہ کیسے شروع ہوتی تھیں، جیسے حروف مقطعات سے، یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، یا قرآن پاک کی کوئی تعریف سے، اس طرح سے سٹارٹ ہوتی تھی. اس صورت سے اس کا تھوڑا سا آپ کو پتہ چلے گا کہ مضمون کیا ہے، اس میں تھوڑی شدت نظر آئے گی. جیسے سورۃ القتال بھی ہے اس کا نام، تو تھوڑی شدت بھی نظر آئے گی، تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ کو اس میں اینڈنگ بھی نظر آئے گی آیتوں کی. اور جب الذین کفروا کہا گیا، تو یعنی پیچھے سے اگر بات دیکھیں تو پیچھے کیا بات تھی، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو نہیں ہلاک کی جائے گی مگر فاسق قوم. الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، ایک تو یہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا. دوسرا یہ کہ جو پڑھنے والا ہے اب وہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، وہ اتنی بات جان چکا ہے کہ کیا پیچھے سے سب چل رہا تھا. اس لیے اس طرح سے ایک بات شروع کی گئی کہ الذین کفروا، اور اللہ تعالیٰ کا ان ایسے لوگوں کے لیے جو جلال ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اس میں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے. اللہ کے راستے سے خود بھی رکے، یعنی خود بھی جو بھی ایمان کی دعوت تھی اس کو رد کیا، اور نہ صرف خود رکے بلکہ لوگوں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے. ایک تو ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خود نہیں کرتے کوئی کام، ایک ہوتا ہے اس سے بڑھ کے دوسروں کو بھی روک دینا اللہ کے راستے سے. یہ ڈبل جرم ہو گیا، خود بھی نہیں ماننا اور دوسروں کو بھی نہیں ماننے دیا، نہ میں خود مانوں گی نہ تمہیں ماننے دوں گی. ایسے لوگ کل بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں، ایسی کوششیں کل بھی ہوتی تھیں اور آج بھی ہو رہی ہیں، اور ہر زمانے میں ہوتی رہیں گی، کیونکہ حق اور باطل کی یہ کشمکش جاری ہے. اب یہ لوگ اپنے آپ کو کافر کہلائیں یا اپنے آپ کو جیسے سو کالڈ مسلم کہلائیں، لیکن ان کی کوششیں اگر اللہ کے راستے سے روکنے کی ہیں، اللہ کے ہاں پھر ان کا کیا مقام ہے، دیکھ لیں. اللہ اکبر. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان فرما دیا، اضل اعمالہم، گم ہو گئے ان کے اعمال، یعنی وہ گم کر دیے، اضل ہے نا، وہ اب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے گم کر دیے ان کے اعمال. کون سے اعمال؟ دو تفسیریں ہیں اس بارے میں. نمبر ون یہ کہ انہوں نے جو بھی کوششیں کی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی، وہ تمام کوششیں اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دی ہیں. ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ حق ہمیشہ غالب آ کے رہے گا. وہ چاہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا نہیں سکتے. ہمیشہ اسلام کے خلاف مخالفین نے اپنے پورے زور لگا دیے، لیکن یہ کوششیں کبھی بھی کامیاب ایسے نہیں ہوئیں. اگر ہوتی تو آج یہ دین اسلام مٹ چکا ہوتا، جتنی اس کے خلاف کوششیں کی گئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، گم کر دیے ان کے اعمال، یعنی ان کی ساری کوششیں اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دی. اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کتنی انہوں نے زبردست ایک سازش کی تھی اپنی طرف سے، تو پورا پورا انتظام ایسا کیا تھا کہ کسی طرح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ کے نہ جا سکیں، کہ گھیرا ڈال لیا تھا گھر کا، اور ہر قبیلے سے ایک شخص موجود تھا تاکہ کسی ایک کے اوپر بھی نام نہ آئے، کس کس سے یہ بدلہ لیں گے تو دیت دے دیں گے ہم، ٹھیک ہے، لیکن کام تمام کر دیا جائے، بات ہی ختم کرو. کیا ہوا ان کی اس کوشش کا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی، اسلام کو مٹانے کی، اللہ کے راستے سے روکنے کی جو کوششیں، ان کو اللہ تعالیٰ غارت کر دے گا، غارت کر دی ہیں. اور نمبر ٹو اس کا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو بھی ان کی نیکیاں ہیں، جو بھی ان کے نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو ضائع کر دے گا. اب ان کی نیکیاں کیا تھیں؟ چاہے کافر ہی تھے، مگر ایک انسان کی فطرت میں موجود ہے ایک نیکی کی چاہت. ہر ایک انسان جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈالا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور یہ کیا نیکی کے کام کرتے تھے؟ جیسے حاجیوں کی بہت خدمت کرتے تھے، مہمان نوازی بہت زیادہ کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. پھر یہ صلہ رحمی بہت زیادہ کرتے تھے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے پالا. آج بھی آپ دیکھیں کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے، کہاں کوئی ان کے خاندان والے پوچھتے ہیں، بلکہ وہ تو الٹا اس خاص طور پہ جو اس قسم کے رشتے ہوتے ہیں چچا وغیرہ کے، اکثر دیکھا گیا کہ وہ تو وراثت کے ہی اتنے یعنی اس قدر لالچ کرتے ہیں کہ وہ الٹا نقصان ہی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی یتیم بھتیجا ہو تو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پہ سے بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنے گھر پہ رکھ لیا تھا، تو اس وقت کے اندر یعنی اپنے قبیلے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت زیادہ ان لوگوں کی طرف سے یعنی اچھا سلوک ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو، جو بھی نیکیاں اور بھی کوئی چیریٹی ورک کرتے تھے، سب ضائع ہو گئیں. کس وجہ سے؟ انہوں نے خود بھی روکے اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکا. اللہ کے راستے سے روکنا کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو ڈائریکٹ روکنا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے لوگوں کو منع کر دیا جائے اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے پہ چلنے سے. اور یہ بھی اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. جو لوگ ایسے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں کفر ہے، شرک ہے، اور وہ پھر توحید پر آ جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کیسے ان کو روکا جاتا ہے اس راستے سے؟ آج بھی ایسی کہانیاں موجود ہیں، وہ لوگ خود بھی نہیں آتے اور ہر طرح سے کانٹے بچھاتے ہیں ان کو اللہ کے راستے پہ جانے سے. سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، خاندان پورا کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ہمارے تمہارے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. والدین تک ایون پریشرائز کرتے ہیں بچوں کے اوپر کہ ہمارا، ماں تک کہہ دیتی ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں تمہارے ساتھ. یہ ایک پریشر ڈالنا ہے ایسا کہ جو اللہ کے راستے سے روکنا ہے. اور بھی بے شمار طریقے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے، مذاق اڑانا کسی کا جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی روکنا ہی ہے تاکہ کوئی جرت ہی نہ کر سکے کہ اس راستے کو کبھی اپنائے. अगर आप किसी और का मजाक कर रहे होंगे तो जितने लोग मजलिस में बैठे हैं वो तो तौबा कर लेंगे कि हमने अगर ये काम किया तो हमें हमारा भी इसी तरह मजाक किया जाए, वो भी पीछे हट जाते हैं। फिर और कैसे रोका जाता? असल में अक्सर तो हमारे लोग जानते ही नहीं है कि अल्लाह का दीन है क्या। जब वो जानते ही नहीं तो ऐसी कोई बात देखते हैं जो नॉर्म से, उनको माशरे के जो तरीके हैं उनसे हटी हुई लगती है और ऐन अल्लाह के दीन के मुताबिक है, उनको ये अबनॉर्मल लगने लगता है। फिर वो डिफरेंट काम करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ऐसी ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे कि इन लोगों को रोका जाए। इसके अलावा कि यानी अगर इस तरह से नहीं तो इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें कोई ना कोई किसी ना किसी दर्जे में लोग दूसरे को रोक रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के लिए ऐसी रुकावटें खड़ी करना कि वो अल्लाह के दीन पर चल ही ना सके, शकू को शुभात पैदा करके, उलझा के किसी को, डाउट्स उसके जहन में डाल के, तुम्हें क्या पता, क्या पता ये, मैंने तो ये सुना, पता नहीं क्या, इस तरह की बातें करना भी अल्लाह के रास्ते से रोकना है। यानी किसी को इतना कंफ्यूज कर देना कि उसको समझ ही ना आए, वो खुद शेकी हो जाए। फिर और कौन से तरीके हैं? एक तरीके बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए ये डिस्कस करने ज़रूरी हैं कि अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो कम अज़ कम हमें इस चीज़ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आमाल को ज़ाया कर देने वाला काम है। इसी तरह ये भी होता है कि लोगों को ऐसी मजलिसों में या ऐसे मशगलों में ऐसा उलझा देना कि अल्लाह की बात सुनने में उनको वक्त ही ना मिले, उनका दिल ही ना लगे। मिसाल के तौर पे गाने बजाने और फजूलियात और ऐसी फजूल कामों में कि उनका दिल दीन की बात करने से ही हट जाए। इसी तरह और क्या तरीके हैं? दीन के अहकामात में या दीन बताने वालों पर, जब मैं नहीं कहती वो परफेक्ट होते हैं, लेकिन जब हर वक्त उनकी बैशिंग की जाए, ये तो ऐसे होते हैं, ये तो ऐसे हैं, वो मौलवी तो इस तरह, वो फलां तो इस तरह, ये तो इस तरह, जब ऑल द टाइम उनको मजाक का निशाना बनाया जाए, उनको बुरा भला कहा जाए, उनके ऊपर तान किए जाएं, तो वहां पे दीन की भी फिर कोई इज्जत नहीं रहती। जाहिर है जिनसे दीन लेना, जब उसकी तरफ ही कोई जाने नहीं पाएगा, उससे दिल हट जाएगा, तो वो दीन को क्या समझेगा? एक बंदा क्या आएगा फिर इस तरफ? जाहिर है दीन किससे लेगा? किसी इंसान से ही लेगा ना। वो इस इंसान को, तमाम को जो भी दीन की तरफ जाने वाले हैं या जो भी दीन का इल्म सिखाने वाले हैं या जो भी दीन पे चलने वाले हैं, उन सब को इन टोटेलिटी, हालांकि कहाँ पे नहीं कोई बुराई होती, सभी इंसान हैं, दीन वालों में भी कोई लोग होते हैं जो ब्लैक शीप होते हैं, काली भेड़े होती हैं जैसे और जगहों पे होती हैं, लेकिन उसकी वजह से सबको बदनाम कर देना, उससे क्या होगा? दीन की तरफ नहीं आएंगे। अल्लाह के रास्ते से रोकना ये भी है, यानी डिफरेंट तरीकों से ना। जरूरी नहीं आपके खड़े होकर कोई सामने कह दे मैं तुम्हें रोकने आया हूं, ऐसे नहीं कोई कहता। मुख्तलिफ हरबे हैं इसके, मुख्तलिफ चीजें हैं जिनके जरिए दीन से, दीन पे चलने से रोका जाता है। डिग्रेड करना जब दीन वालों को, और उनका किसी तरह से भी डिग्रेड करना, उनकी बुराइयों को हर वक्त उछालते रहना, या किसी एक ने की और कहना देखा ऐसे ही होते हैं ये सब, या मजाक करना, या उनपे तान करना, या उनके ऊपर कोई किसी किस्म की हर वक्त इल्जाम तराशी करते रहना, ये सब चीजें रोकने वाली ही तो हैं, और क्या है। तो ये मुनाफिकीन भी हो सकती हैं, ये कुफारे कुरैश भी हो सकते हैं, ये कोई उस जमाने के भी हो सकते हैं, आज के जमाने के भी हो सकते हैं। यही लोग थे ना जो हक पे चलने से रोकते थे। मुनाफिकीन का किरदार भी क्या था? यही तो था, वो मुसलमानों को आगे कहते थे कि ये क्या बातें हैं, ये ये कौन सी, ये तो पुराने लोगों की कोई यानी ऐसे वही बातें रिपीट करते जाते हैं, वही हैं वो लोग जो दीन पे चलने वाले थे तो उनको कहते थे ये तो सुफहा हैं, बेवकूफ़ हैं, इस किस्म की वो बातें करते थे। इससे भी क्या है, वो भी उनका भी तो यही काम था। तो हमेशा जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नहीं रोका जाता, अगरचे वो भी कोशिशें होती हैं, लेकिन इस किस्म की हिडन कोशिशें बहुत सारी होती हैं। इसी तरह जब सच्चे दीन को छोड़ के दूसरी राहें अख्तियार कर ली जाएं शिर्क की, यानी जिस चीज से दीन ने मना किया है उन अकायद को प्रमोट किया जाए, तो वह भी सीधे रास्ते से रोकना ही है। और वसवसे और बदगुमानियां और ये सब चीज पैदा करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। लोग बातें करके और अपनी राह लेते हैं और सोचते हैं तो बात ही की थी ना, आपको नहीं पता आपकी बातों से कितने लोग पीछे हट गए। और ये तो दीन इतना मुश्किल है, ये तो आज इस पे कोई चल ही नहीं सकता, ये भी क्या है, रोकना ही तो है। अल्लाहु अकबर। एक तरफ इनका जिक्र है तो दूसरी तरफ बिल्कुल इससे उलट उन लोगों का जिक्र है जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं। कैसे हैं वो लोग? एक ग्रोह वो है जिसकी सारी नेकियां जाया हो गई। दूसरा ग्रोह कौन सा है? वल्लदीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए। ईमान के अंदर ही इस्लाम भी शामिल है, याद रखिएगा। जब ईमान का लफ्ज आए तो उसमें इस्लाम भी शामिल होता है, जब इस्लाम का लफ्ज आए तो उसमें ईमान भी शामिल होता है, लेकिन दोनों साथ साथ अगर आ जाएं, ये मैं आपको पते की बात बता रही हूं, इसको नोट करें। जब ये दोनों लफ्ज साथ साथ आ जाएं, ईमान और इस्लाम, तो फिर ईमान में ईमानियात आ जाती हैं जो दिल के अंदर की बातें, दिल के अंदर का यानी यकीन है। जैसे कि हमें पता है अल्लाह पर, रसूलों पर, मलाइका पर, किताबों पर, कयामत पर और तकदीर पर, ये सब ईमानियात हैं, ये 6 ईमान की यानी शाखें हैं। तो अंदर की चीज और यानी ईमान हम कहते हैं ना दिल में होता है, तो ये दिल की चीज है। और जब इस्लाम की बात आ जाती है तो इसमें फिर जाहिर के अमाल होते हैं। जाहिर के अमाल में क्या है, यानी तौहीद है, नमाज है, रोजा है, जक़ात है, हज, आपको पता है ये इस्लाम के अरकान है। वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और अमल किए साले, याद रखें ये कॉम्बिनेशन कुरान में बहुत जगह आया है, ईमान और साले अमल, ईमान और सारे अमल, इसलिए कि ईमान के असरात हैं साले अमल, ईमान का फ्रूट है। जब ईमान होता है तो फिर साले अमल भी होता है। अमल के बगैर ईमान कुछ नहीं है। कोई कहे कि हाँ मैं मानता हूं, हाँ मैं मानता हूं ये सच्ची बात है, हाँ, वट नेक्स्ट देन? ना वो नमाज पढ़ रहा है, ना वो अल्लाह रसूल के अहकामात पर अमल कर रहा है, ना वो अपनी आखरत की कोई तैयारी कर रहा है, तो उसका ईमान क्या है फिर आखरत पर? उसका ईमान क्या है फिर अल्लाह पर? ये कैसा ईमान है? या फिर तो ईमान ही नहीं है, या फिर ईमान इतना कमजोर है इसलिए ईमान के असरात ही नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ईमान के तो असरात तारी हो जाते इंसान के ऊपर। कोई कहे कि मेरे पास ईमान है मगर अमल नहीं है, तो इसका मतलब ईमान इतना कमजोर है कि इंसान अपने इस 5-6 फीट की बॉडी पर ईमान को नहीं उतार सका, तो ऐसा ईमान उसको जन्नत में कैसे लेके जाएगा? तो ईमान के असरात इंसान के ऊपर होने चाहिए, उसके अजाब पर नजर आने चाहिए, उसके उठने बैठने में नजर आना चाहिए, उसकी जिंदगी में उसके मामलात में नजर आने चाहिए। तो आमिलुस सालिहात, ईमान के साथ अमल करे जिसने साले, कैसे ये समझ ले, आगे इसकी डिस्क्रिप्शन है। वह आमनु बीमा नुज़िला अला मोहम्मद, हालांकि ये आ चुका वल्लदीना आमनु, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन समझ लें उसकी, वरना ये काफी था वल्लदीना आमनु आमिलु सवाल। लेकिन मुनाफिकीन ये एक अलग ही कैटेगरी थी जो मदनी दौर में वजूद में आई, इससे पहले इनका कोई नामो निशान नहीं था। मक्की दौर में कोई मुनाफिकीन नहीं थे, याद रखें, सच्चे ईमान वाले थे या काफिर थे बस। ये अब एक नया ही एक ग्रो सामने आया था, तो इसलिए मदनी सूरतों के अंदर आप उनका जिक्र देखेंगे अक्सर। और उनके लिए ये बात बड़ी वो थी कि अच्छा ठीक है, वही आई है, कुरान उतरा है, तो फिर तो हम मान रहे हैं, लेकिन जो आपकी बात है, आप अपनी तरफ से ही कह रहे हैं कि भाई चलो अब पीछे उनके, अब थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड समझ लें पहले कि देखें, कुछ लोग ऐसे थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ इसलिए इस्लाम ले आए कि ठीक है सारे ही ला रहे थे इस्लाम, हमारे कबीले वाले भी ला रहे हैं, सब ला रहे हैं, बड़ा इन है ये रिलीजन, हमारे सारे इलाके वाले ईमान ले आए हैं, इस्लाम ले आए हैं, तो फिर हम भी ले आते हैं, चलो सारे ही कर रहे हैं तो कुछ। लेकिन उनको उस वक़्त इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस कलमे को पढ़ने से उनसे डिमांड क्या किया जाएगा। जाए इनमें सारे कोई ऐसे शुरू से मुनाफिक नहीं थे कि उन्होंने हम सोचा हो कि मैं हम भाई इस तरह करेंगे, हम कोई गेम्स खेलेंगे, हम बाद में ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसा नहीं था। बड़े उस वक्त तो बड़े अच्छे तरीके से लेकर आए, बड़े सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया उन्होंने, कोई कलमा बड़े खलूस के साथ पढ़ा, लेकिन दे डिडंट नो कि इसकी डिमांड्स क्या होंगी। ये बाद में हमसे ये मांगेगा, हमने तो यही सोचा कि भाई अच्छा ठीक है ये छोटे छोटे काम करने हैं, अच्छा कलमा ही पढ़ना है ना, अच्छा ये। उनको समझ नहीं थी कि इस्लाम डिमांड्स कंप्लीट सबमिशन एंड अनकंडीशनल सबमिशन, ये याद रखिए, सब नॉट ओनली सबमिशन, अनकंडीशनल सबमिशन, गैर मशरूत सबमिशन को क्या कहेंगे, यानी इंसान अपने आप को सरेंडर कर दे, झुक जाए गैर मशरूत तौर पे, कोई शर्त नहीं रखे कि अगर ये होगा तो फिर मैं ये करूंगा, हाँ फिर मुझे पहले बताया जाए, फिर मुझे समझ आए, फिर मैं ये करूंगा, या हाँ इसका फायदा क्या है फिर मैं ये करूंगा, अच्छा या मेरी ये शर्तें हैं उसके बाद मैं ये मानूंगा, नो, बस समय ना वात आना। अब समय ना वात आना तो हम भी कहते हैं, हमारे लिए समय ना वात आना कहना ये बड़ा आसान है, हम भी समय ना वात आना करते हैं, या हम भी सोचते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है और हम कर रहे हैं। समय ना वात आना इतना आसान नहीं है, इसकी मिसाल आप वहां पे देखें जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठकर कोई हुक्म सुना रहे हैं और उसी वक्त अताना करना है, फॉलो करना है उसको, वहां पे मुश्किल था। हमारा समय ना बताना कैसे है? आज सुन लिया, कल को सोचा, परसों को देखा, उससे पूछा, उससे पूछा, फिर दूसरी दफा कुरान शुरू हुआ फिर पढ़ रहे हैं, फिर तीसरी दफा कुरान शुरू हुआ फिर पढ़ रहे हैं, अताना कहीं नहीं आ रहा। अभी सोचा हुआ अताना उस वक्त करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, अताना उस वक्त करूंगी जब मैं सोच लूंगी, फलां से पूछ लूंगी, अताना करने करने में ही साल हा साल गुजर गए, अताना किया कब से मुसलमान है और 80 साल के हो गए अभी तक अताना नहीं शुरू हुआ, हमारा तो ये हाल है ना, अताना करने में समय ना, और फौरन अताना नहीं है हमारा, समय ना, वो फिर बहुत डिले है फिर अताना, वहां पे इस चीज की गुंजाइश नहीं थी जनाब, मदनी दौर में इस चीज की कोई कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि जी अभी सोचेंगे, सुन लिया और सहाबा का क्या अमल था, उसी वक्त मानना है, जस्ट फॉलो, दैट्स इट। अब ये तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था, अच्छा फिर ये करना भी पड़ गया, अच्छा अब ये तो कह रहे हैं वो काफले वालों के पीछे चलो, अब सोचिए ना बदर से थोड़ी पहले अगर ये उतरी है सूरा तो उनके पीछे चलो, क्या जरूरत है उनको छेड़ने की, कुरैश को जाके छेड़ने, आराम आराम से करो ना, क्या जरूरत है किसी से इस तरह से बैर लेने की, वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, छोड़ो ठंडे ठंडे चलो कि सबके साथ बड़े अच्छे तरीके से इस तरह, ये नहीं जरूरत है किसी को छेड़ने की, जरूरत नहीं है वो इस तरह, क्योंकि वो कहते थे हमें भी जाना पड़ेगा फिर, ये तो उनसे दुश्मनी लेने वाली बात हो गई, कल को पता नहीं क्या होता है इस्लाम का, इस्लाम पनपता भी है कि नहीं, खाम खाम उनसे मुखालफत ले ली तो क्या फायदा होगा। तो फरमाया वो उनको इस बात का बहुत वो था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कह रहे हैं हम इसको कैसे मान लें, खुद ही इन्होंने ये शुरू कर दिया। फरमाया आमनु बीमा नुज़िला अला मुहम्मदिन, उस पर ईमान लाओ जो नाजिल किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ कुरान नहीं नाजिल हुआ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वही है मतलूब ही और वही है गैर मतलूब ही है। गैर मतलूब कौन सी होती, जिसकी तिलावत नहीं की जाती, जिसको हदीस कहते हैं, وہی مطلوع کون سی ہے؟ یہ قرآن. جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پر تو ایمان لائے حدیث پر ہم نہیں ایمان لاتے، وہ کیا کہیں گے؟ آمنو بما نزل علی محمدن کو. وہ کیسے اس کو ڈیفائن کریں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن اترا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. وہ تو اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں ہیں، وہ تو جو بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو پھر اس کو کیا کہیں گے وہ؟ تو اس لیے کہا گیا اسپیسیفکلی کہ یہ آمن و عامل الصالحات مینس ایمان لاؤ اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. یہاں پر رسول بھی نہیں کہا گیا، اعلی رسول بھی، رسول رسالت کا کام انجام دیتا ہے، رسول پیغام لے کر آیا اللہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اگر کہہ رہے ہیں تو وہ بھی ماننی اسی طرح ضروری ہے، آپ کی بات کو بھی فالو کرو. اسپیسیفک نام لیا گیا، ایز اے پرسن بھی جو بات کہہ رہے ہوں. صرف کہتے تھے ہمیں دکھائیں نا کہاں پہ ہے، جیسے آج لوگ کہہ دیتے ہیں ہمیں دکھاؤ کہاں قرآن پہ لکھا ہوا ہے. کہتے تھے اگر قرآن میں آیا تو پھر ٹھیک ہے، ان کی جو بات ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے. تو ایمان تو اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے، اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس پر ایمان نہ لایا جائے. اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو لوگ کہیں کہ ہم ہاں اللہ کو ایک سمجھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، چاہے وہ کوئی یہودی ہو یا وہ کوئی بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہو، اور اچھے بڑے نیک کام بھی کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے اخلاق کے بھی اور حقوق العباد کے بھی اور چیریٹی ورک بھی بہت کرتے ہیں، لیکن کہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو ایمان از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو آپ کے اوپر اترا اس پہ ایمان. ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لیں گے تو پھر قرآن کو بھی مانیں گے، اور جو کچھ آپ کے اوپر اترا اس سب کو مانیں گے. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ ہے حق ان کے رب کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، وہ سچائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کرنے کی گنجائش. جو شک کرے گا وہ کافر ہے، جو شک کرے گا وہ کافر ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا. تو کوئی اگر کہے میں اللہ پر ایمان لایا، میں نیک عمل بھی کرتا ہوں، لیکن میں اس پر ایمان نہیں لاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو وہ ایمان اس کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کا یہ کہنا کہ میں اللہ پر ایمان لایا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا آخرت میں، یہ اللہ کو ایسا نہیں چاہیے ایمان. مدینہ کے یہودی بھی اللہ کو تو مانتے ہی تھے نا، اپنی کتابوں کو تو مانتے ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. تو پھر کیا وہ سیکھتا؟ پھر تو ان سے پھر ان کا ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں نا رسول مانتے تھے، اور کون سا، وہ کوئی بت رکھ کے تھوڑی پوج رہے تھے. تو کیا چیز تھی پھر، مسئلہ ان کے ساتھ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے. جب نبی نہیں مانتے تو قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے. تو اس قرآن کو ماننا ضروری ہے، حدیث کو ماننا ضروری ہے، یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے سب کو. جب تم یہ کرو گے تب کفر عنہم سیئاتہم. دیکھیں کفارہ نہیں، کفارہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یعنی مٹا دے گا، چھپا دے گا، دبا دے گا، دفن کر دے گا ان کی برائیوں کو. اور دو خوشخبریاں ملی ہیں، اور دوسری خوشخبری کیا ہے؟ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور درست کر دے گا ان کے حال کو، اصلاح کر دے گا ان کے حال کی. دیکھیں یہ کتنی بڑی اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات کی، ان کے حال کی، کہ ان کو اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے نور میں لے آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا حال ایسے بدل دیا، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ نہیں کہ آخرت تو ٹھیک ہے، جو ہے اس کا تو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو دور کر دے گا، ان کی یعنی معاف کر دے گا ان کو، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کے हाल की इसलाह कर देने का मतलब यहाँ पे कोई ये ना समझे कि उनको बहुत मालो दौलत मिल गया और उनके रेल पेल हो गई और ऐशो आराम मिल गए। हम तो शायद हालात की इसलाह इसी को समझते हैं, लेकिन असल में हाल की इसलाह कैसे है कि दुनिया की जिंदगी में भी अल्लाह ताला ने उनकी डायरेक्शन सही कर दी, उनके शौक, उनकी प्रायोरिटीज, उनकी जिंदगी की डायरेक्शन सब बदल गई। वो अंदर बाहिर से बदल गए, वो नए इंसान बन गए। क्या ये हाल की इसलाह करना नहीं है? वो किन गुमराहियों में पड़े हुए थे, किन अंधेरों में थे, अल्लाह ने उनमें से उनको निकाल दिया, जहालत के भी। और कितनी देखें क्या क्या वो करते थे, जमाना जाहिलियत की चीजों को आप पढ़ें तो पता चलेगा कि कैसे वो बच्चियों को जिंदा दर गौर कर देते थे, कैसे खून खराबा करना, कैसे यानी सूद खाना, इसी तरह और लूट मार और इस किस्म की चीजें करना, शराब पीना, और ये सब उनके लिए कितने मामूली काम थे। अल्लाह ताला ने उनकी इसलाह कैसे कर दी? उनकी तो सोच ही बदल के रह गई, वो तो नए इंसान बन गए। हाँ, अपनी आखरत की तरफ मदोजे गए। ऐसे लगता है कि जैसे आप दौरे जाहिलियत को पढ़ें और उसके बाद सहाबा की जिंदगी को बाद की देखें, इस्लाम के बाद जो उस वो उनका जो माहौल और उनकी जो बातें और उनकी जो जिंदगी थी, टोटली चेंज, टोटली। ऐसे लगता है किसी ने फ्लिप कर दिया। तो उनकी तो जिंदगियां संवर गई, दुनिया की भी संवर गई, आखरत तो संवर ही गई। अल्लाह ने आखरत का भी उनका हाल अच्छा कर दिया, उनको तो जैसे एक मकसद मिल गया जिंदगी का। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही सलाह कर देता है जब कोई ईमान लाकर साले अमल करता है, और जब वो ईमान लाता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और फिर ये हक ही है, ये हक है, ये याद रखो, यही हक है, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए ये दो काम करता है। ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, ये किस वजह से, ये क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया, ये देखें, एक के तो अमाल जाया हो गए, एक की नेकियां भी जाया हो गई, है ना, ऊपर आया ना आयत 1 में, एक की नेकियां भी मिटा दी गई और दूसरे ग्रोह की बुराइयों को अल्लाह ने मिटा दिया, तो ये क्यों है? ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, ये इसलिए कि जो काफिर हैं उन्होंने इत्तेबा की बातिल की। बातिल क्या चीज होती है? बातिल वो चीज होती है जिसके कोई बेस नहीं है, जो झूठ है, बेसलेस चीज। जैसे होता है ना कि कोई इतनी बेकार बेसलेस बात करे, मसलन में ऐसे ही एक बात कर रही हूं, मसलन कोई कहे कि फलां के सर पे एक सींग उगे में, इतनी बेसलेस बेकार फजूल बात है, ये बातिल है। कोई कोई उसका तुक ही नहीं, कोई उसका कोई उसकी जगह ही नहीं, कोई बुनियाद ही नहीं है इस बात की। ये इसलिए कि उन्होंने ऐसी चीज की पैरवी की है जो बातिल है। देखें, शिर्क का कोई भी यानी उसकी कोई बुनियाद नहीं है, उसकी कोई दलील नहीं है, बेसलेस चीज है, वो खुद ही बनाई हुई है बातें, तो ये बातिल है। और इन्नल्लज़ीना आमनु तबअल हक मिन रब्बिहिम, और जो ईमान लाए ना उन्होंने इत्तेबा की, हक की जो उनकी रब की तरफ से आया, उस वही की इत्तेबा की जो उनके रब ने उतारी है। ये फर्क है, इस फर्क की वजह से दोनों को देखें क्या मिला, एक के किया धरा भी अमल भी जाया, दूसरे की बुराइयां भी मिटा दी गई। तो फर्क इस चीज से आता है कि कौन किसको फॉलो करता है। इत्तबाऊ, इत्तबाऊ में और इतात में फर्क है, इतात भी फॉलो करने को कहते हैं, इत्तबाऊ इत्तेबा करना क्या होता है? हम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा की जाए, फत्तबिउनी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नबी आप कह दें अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो मेरी इत्तेबा करो, इतात नहीं कहा गया, इत्तेबा करो। क्या फर्क है? इत्तेबा होती है किसी के फुट स्टेप्स पे चलना, जैसे जहां जहां किसी ने पैर रखे हुए उस जगह के ऊपर पैर रख के आप चल रहे हैं, फिर तो कभी घूमेंगे नहीं ना। किसी ने आपको अपने पीछे चलने को कहा तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कहीं मिस कर दें उसको, हो सकता है उसकी गाड़ी आगे चली गई और आप दो गाड़ियां और बीच में आ गई, आपको पता ही नहीं चला, आपने मिस कर दिया। लेकिन अगर किसी के फुट मार्क्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर ऊपर आप पैर रख के जा रहे हैं, तो तो क्या कभी रास्ता गुम कर सकते हैं? क्या कभी लॉस्ट हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप उसको जिधर जिधर कदम का निशान है उधर अपने पैर रखते जा रहे हैं। ये होती है इत्तेबा करना। तो उन्होंने सिर्फ हक को मान नहीं लिया, मान के घर बैठ गए, हमारे तरह के बस मान लिया, मानना ही काफी हो गया, हमने बड़ा एहसान कर दिया इस्लाम पे कि हमने कह दिया कि हाँ ये सच्चा दीन है। नहीं, देन डू व्हाट? फॉलो इट। और फॉलो कैसे? एक एक बात को, फुटस्टेप्स क्या है, एक एक चीज को। चलने वाले ने तो कहा मुझे फॉलो करो, आपने फॉलो ऐसे किया कि उसकी एक चीज को भी नहीं छोड़ा, एक एक कदम के ऊपर अपना कदम रखा। ये है इत्तेबा। ईमान वाले इस तरह से करते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे चलते हैं वो जिंदगियों में। तो देख लें, जब चलने में ही फर्क है, जब फॉलोइंग में ही फर्क है, तो हक फिर जन्नत की तरफ ले जाएगा, बातिल फिर किधर लेकर जाएगा? दोनों तो उलट है ना, हक और बातिल उलट हैं एक दूसरे के, ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के। एक हक के रास्ते को फॉलो करने वाला है, एक बातिल के फुटस्टेप्स पे चलने वाला है। जब दोनों उलट है तो एक जगह पे तो नहीं दोनों पहुंचाएंगे ना, फर्क फर्क जगहों पे पहुंचाएंगे ना। कैसे हम फैसले कर लेते हैं कि जो हक पे चले या बातिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने पहुंच जन्नत में ही जाना है, ये कैसे फैसले करते हैं हम? कदालिका यद्रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्थालहुम, इसी तरह अल्लाह बयान करता है लोगों के लिए उनकी मिसालें। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह मिसालें ये इसलिए बयान करता है कि इनकी मिसालें हक पे चलने वालों और बातिल पे चलने वालों की, लिन्नास तमाम लोगों के लिए ये मिसालें बयान करता है अल्लाह ताला। क्यों? ताकि लोग देख लें, समझ लें कि हम किसके फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं। ये मिसाल है और इस मिसाल में खुद को रखें। मिसाल दे के समझा दिया गया किसके साथ क्या होना है, जो ये करेगा उसका ये है, जो ये करेगा उसके लिए दूसरा अंजाम है। अल्लाह इस तरह मिसालें देता है हमारे समझने के लिए। अगली आयत जो आयत नंबर 4 है, जैसे आपको पहले अभी मैंने शुरू में बताया कि सूरतुल क़िताल भी इसका नाम है और इसमें क़िताल के कुछ अहकाम दिए गए हैं, और यहां चूंकि ये बदर से पहले की सूरत है तो इसमें कुछ ऐसे आदाब जंग बताए गए हैं, अहकाम जंग के बताए गए हैं। और ये आयत वो है, आप कई जगह इस आयत को कोट होता हुआ सुनेंगे, इसलिए इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाज लोग अपने मजमूम मकासद के लिए इसको यूज करते हैं कि जी देख लो कुरान के अंदर तो ये है, इसलिए खड़े हो जाओ और बस इस तरह करो, देखो कुरान कहता है काफरों के साथ ऐसे करो, और खास तौर पे यूथ वगैरह को इस तरह से अपने झांसा देते हैं, इस तरह से उनको यानी फंसाते हैं अपने जाल में और फिर उनसे अपने मकासद पूरे कराते हैं। ठीक है, ये मुसलमानों की तरफ से होता है। और दूसरी तरफ कुफार में ऐसे लोग हैं जो मीडिया में हैं, या मुसलमानों में भी इवन कई हैं, जो कि इस आयत को पकड़ के कहते हैं कि देखो जी कुरान और देखो जी इनका इस्लाम, देखो कैसे कहता है कि इस तरह से करो, देखो ये कितना जालिमाना मजहब है। और कई हमारे मुसलमान जिनको नई समझ होती है अपने दीन की, वो भी इस जाल में फंस जाते हैं और वो भी बदगुमान हो जाते हैं अपने दीन से। तो ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे और आपके दूसरे चैनल्स पे बैठ के इस किस्म की आयतें कोट करें, तो आपको भी समझ होनी चाहिए कि क्या, ना कि हम भी वो हो जाए हाय वाकई अब हम तावीलें क्या दें, नहीं नहीं ये तो ये ऐसे है ये वैसे। उलट सीधी तावीलें देने की जरूरत नहीं है, जो हक बात है वो हक है, ना तो हम उसको ढांपें, ना इसको अवॉइड करें, ना इस बात से शर्माएं, ना झिझकें इस बात को कभी भी एड्रेस करने के लिए कि जब कोई ये बात करे तो उसको समझाना हमारे लिए जरूरी है कि हम उसको बताएं कि क्या इसका माना है। इस्लाम दीन हक है और इसमें फितरत के ऐन मुताबिक जो भी बातें की गई हैं वो फितरत के ऐन मुताबिक है। तो अब हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अब बदर होने वाली है या बदर हो चुकी है, चलो जो भी हम समझे, अगर ये दोनों सूरतों में ये बात आती है तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि हमने पास्ट में पढ़ा है कुरान पाक में कि कौमें जो गुजरी उनके पास पैगंबर आए, कुछ लोग मान गए और जो नहीं माने फिर हुआ क्या था, ان کے اوپر اللہ کے عذاب آئے. اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پھر قرآن پاک میں فرمایا قریش مکہ سے کہ تم کوئی ڈفرینٹ نہیں ہو, اگر ان کے اوپر یہ آئے تو تم پر بھی آ سکتا ہے, تم اپنے آپ کو فکس کرو, ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے, اس سے بعد بڑا عذاب دکھائیں گے, دنیا کے چھوٹے عذاب دیں گے, پھر بڑا آخرت کا عذاب پھر آئے گا. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, جو جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, امت دعوت, اس کے بعد پھر یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے, اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کوششیں اپنی ایگزاسٹ کر دیں, ان دا اینڈ جب انہوں نے نبی کے قتل کی سازش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہاں سے حفاظت کے ساتھ نکال لیا, اس کے بعد ہونا کیا تھا؟ پچھلی قوموں کے ٹریک ریکڈ کے مطابق بتائیں کیا ہونا تھا ان کے اوپر قریش مکہ پہ؟ اللہ کا عذاب آ جاتا نا, اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے اپنے نبی کو نکال لیتا تھا, انہوں نے تو نبی کو مجبور کر دیا کہ وہ نکل جائیں, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نکال لیتے تھے. تو اب ان کے اوپر تو عذاب کا کوڑا برسنا تھا, لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی جتنی آپ کی امت ہے, اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے وائپ آؤٹ نہیں کرے گا, اس طرح سے نہیں مٹا دے گا جیسے کہ پچھلی قوموں کو مٹا دیا تھا. لیکن ان کے اوپر عذاب تو آنا تھا, پچھلے پیغمبروں کی تکذیب کے اوپر ان پہ کیسے عذاب آئے, ان کے اوپر کیسا عذاب آنا تھا جنہوں نے آخری نبی کو کس طرح سے ستا ڈالا, اب ان کے اوپر کیا آنا تھا؟ یہ بدر جو تھا نا, مارکہ بدر, یہ عذاب کی ایک صورت تھی ان کے اوپر. اور عذاب جب آتے ہیں تو عذاب کوئی پلیزنٹ نہیں ہوتے, عذاب بہت پینفل ہوتا ہے. لیکن فرق یہ ہے پچھلی قوموں سے اور اس میں کہ یہ عذاب اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں کے تھرو کافروں کو چکھایا. پچھلے عذاب آسمانی کوئی ایسی وہ چیزیں ہوتی تھیں, جیسے چیخ کا عذاب آیا, جیسے بستیوں کو الٹ دیا گیا, جیسے پتھروں کی بارش ہوئی, جیسے طوفان بارش ویسے طوفان نوح آ گیا, جیسے اس قسم کے عذاب تھے. لیکن یہ عذاب ان کے ہاتھوں سے دیا گیا, ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اب چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر ان کو بیان کرنا یہ کس قدر بری بات ہے کہ ایک آیت نکال کر کہنا دیکھا یہ تو دیکھو ایسے کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, خود صرف اتنی صرف بات بتائیں مجھے, کسی ملک میں کوئی کسی ملک کے باغی ہوتے ہیں, اس ملک کی حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں, اس ملک کو کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی دہشت گرد ہوتا ہے, کوئی اس طرح ہوتا ہے, اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ پیار کیا جاتا ہے, محبت سے رکھا جاتا ہے, ہاں اس کو کھلایا پلایا اور اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے. یہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے پھر سب کو پتا ہے. اللہ کے جو باغی ہوں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تم اپنے باغیوں کو تو کبھی چھوڑتے نہیں ہو, ان کے ساتھ سخت ترین سلوک کرتے ہو, ٹارچر کرتے ہو, سب کرتے ہو, سب کو پتا ہے. اللہ کے باغیوں کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے, یہ تو ان کی دنیا کی سزا ہے, آخرت کی تو بہت بڑی ہے, آخرت کی تو بہت بڑی ہے. تو یہ اللہ کے جو باغی جن کے اوپر حجت تمام ہو چکی تھی, ان کی ایک سزا کے طور پہ ان کو یہاں پہ بتایا گیا ہے. اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کہتا ہے کہ جہاں کافر نظر آئے نا بس اس کی گردن پکڑ لو, اس کو ایسے کرو, اس کو یہ کرو, اس کا خون بہا دو, اس کا, یہ ایک جنرل آیت نہیں ہے. یہ اس طرح اگر کوئی حکومت کہتی ہے کہ جو مجرم ہیں ان کو اس طرح سے کیا جائے, ان کو یہ سزا دی جائے, ان کو پھانسی دی جائے, ان کو یہ کیا جائے, ان سے یعنی کام کرواؤ, ان سے مشقت کے کام لو, ان کو ایسے, تو کیا اس کو ہر ایک سٹیزن کے لیے مان لینا چاہیے؟ نہیں, وہ صرف ان مجرموں کے لیے. کیا اس کی وجہ سے کوئی حکومت ظالم ہو جاتی ہے؟ نہیں, اس کو دنیا کا نارم سمجھا جاتا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی. لیکن جب اللہ کی طرف سے اللہ کے مجرموں کے اوپر ایسی بات آئے تو پھر سب کو بہت ترس آنے لگتا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ ظالمانہ بات ہے. تو फिर तो आप भी सारे जेलों में जितने लोग हैं उन सबको निकाल के बाहर खड़ा कर दो कि नहीं ये तो बड़ा जुल्म है, इनको क्यों कैद में रखा हुआ। अरे जिनको फांसी दी जाती इनको फांसी ना दो, जिनको उम्र कैद दी जाती उनको उम्र कैद ना दो, तो सारे जुल्म नहीं है क्या फिर? तो इसलिए हमें कोई ऐसे अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है कि हाय कुरान में ये आते किसी तरह छुपा लो। क्यों? अल्लाह के मुजरिमों की ऐसी सजा है। और वो क्या सजा दी जा रही है? वो भी मैदान जंग की बात की जा रही है, ये याद रखिए। ऐसे नहीं कहा जा रहा कि जहां पर कोई काफिर है, कोई अल्लाह का कलमा ना पढ़े तो तुम ये शुरू कर दो। ये भी एक जो हमारे मुसलमानों ने इसको किस तरह से ट्विस्ट किया कि जिन्होंने अपने मकासद पूरे कराने थे उन्होंने इसको ऐसा तरोड़ा मरोड़ा आयत को कि उन्होंने भी इसको अपने अपनी उसके लिए अपने फायदे के लिए यूज किया। देखो इस तरह से लोगों के अंदर रेज गुस्सा उभारा जाए और उनको कहा जाए देखो अल्लाह तुम्हें क्या कहता है और तुम फिर ये करते हो, तुम आराम से बैठे हो, देखो अल्लाह तुम्हें क्या कह। तो इसलिए आयत को सही समझना बहुत जरूरी है। देखें अब क्या है, या और आप सबको यह पता है कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है जिस वक्त आप काफिर को दावत दे रहे हो, दावत का काम कर रहे हो, तब क्या कहा गया? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया था? फिरौन के पास जाएं तो कैसे बात करें? सख्ती के साथ उसका गला पकड़ लेना उसको नहीं, नरमी के साथ बात करना, कौले लयिन कहना। अहले किताब के साथ बात करो तो कॉमनैलिटी के ऊपर बात करो, नहीं कहा गया क्या उनके थप्पड़ मारो उनके गले पकड़ो, कुछ नहीं, नरमी। लेकिन लेकिन फ़इज़ा लकीतुम, फिर जब तुम मुलाकात करो उनसे, ये क्या चीज है? ये है जंग। जंग में जब आमने सामने आओ, मुझे कोई दुनिया का कानून बताओ जहां पे जंग में कहा जाए कि जब जंग हो, ये अपनी फौजों को सिखाते हैं, सबको सिखाते हैं कि जब जंग करो तो बड़ी मोहब्बत के साथ करना, कौन ऐसा सिखाता है? ये जंग के अहकामात हैं। जब लकी तुम, जब तुम उनसे जंग में आमने सामने आ जाओ, अल्लादीना कफर, उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, तो अब नहीं नरमी, अब नहीं ऐसे रुकना के अब, तो फिर क्या करो? फदर बर रेकाब, तो मारना है गर्दनों का, यानी फदरी दो दफा, यानी कि एक तरह से समझ लिया गया, एक तो मारो, मारना गर्दनों का, फिर गर्दन पे मारो, फिर देन इट्स फिर कंप्लीटली फिनिश। फिर ये नहीं है कि अब इवन यहां पे जब पुलिस को वो दी जाती है ट्रेनिंग, तो उनको कहा जाता है कि जब आपको कोई खतरा हो तो शूट टू किल, ऐसे नहीं है कि फिर उसकी टांग में गोली मार देना, उसके पैर में मारने की कोशिश करना, मारना ना उसको, उसकी कहीं हाथ पे जरा सी लगाने की कोशिश, ऐसे नहीं होता, फिर बस खत्म। तो अब ये बताएं कि जब जंग में बात हो रही है तो फिर क्या करना होगा? तो ये उस वक्त का मामला है। दूसरे ये याद रखिएगा कि ये उस वक्त का मामला है जब अल्लाह का ये अजाब था इनके ऊपर। अल्लाह ताला ने बदर को यौमुल फुरकान कहा है कि ये दिन था फर्क करने का हक और बातिल में। हक और बातिल की कशमकश चल रही थी 13 सालों से पिछले मक्की दौर में, उसके बाद 2 साल ऊपर हो गए मदीना में। हक और बातिल अब वाजे हो जाएगा कि कौन है हक पे और अल्लाह की मदद किसके साथ है। बड़े बड़े बातिल के सरदार जो थे वो कत्ल हुए थे, इसी में अबू जहल मारा गया था। फिर कत्ल करो गर्दनों पर, अब नहीं कोई चांस देना इनको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों दुश्मन से भिड़ने की आरजू मत करो, जंग की यानी तमन्ना नहीं करनी चाहिए, जंग हो जाए बड़ा मजा आएगा फिर हम बताएंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। बाज लोगों को बड़ा ही जज्बाती से होते हैं, उनको बड़ा शौक होता है कि जंग हो जाए ना, फिर कितना यानी पता नहीं उनको थ्रिल होती है या क्या कि पता नहीं कितना मजा आएगा। कभी जंग ना मांगे, कभी ना मांगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इससे, और फरमाया अल्लाह से आफियत मांगो। लेकिन अगर जंग हो जाए, अगर लड़ना पड़ जाए, तो फिर साबित कदम रहो और जान लो कि फिर तलवारों के साए में ही जन्नत है। फिर नहीं पीछे हटना, फिर नहीं हथियार डालने, फिर उल्टे कदमों भागना नहीं है। लेकिन ये नहीं हमें कहा गया कि जंगे लड़ा करो, बड़ा अच्छा मजा आता है, जंग किया करो, ऐसे नहीं कहा गया। कहां पे है ये हदीस? तो कहती है कि दुश्मन से भिड़ने की आरजू ही मत करो, अल्लाह से आफियत मांगो। कितना पीसफुल एक मैसेज है। लेकिन अगर जब जाहिर है जंग होगी तो कौन सा मुल्क होगा जो अपनी फौजों को कहेगा जंग हो ना, तो फिर उसके बाद तुम बस गिर जाना वहीं पे। नहीं, जंग हो तो फिर साबित कदम हो के दिखाओ, क्योंकि अब अगर तुम हथियार डालते हो, अगर तुम कमजोरी दिखाते हो, तो हक की फिर शिकस्त होगी। तो मोमिन जो होता है वो हक पे होता है, उसकी जब कुफर के साथ जंग होती है तो फिर हक और बातिल की जंग होती है, फिर नहीं तुमने पीछे हटना। हत्ता इदा खंतुमूहुम, हत्ता के जब खूब सख्ती कर लो उनसे, यानी खूब खून बहा चुको, खून रेजी हो जाए, फशुद्दुल वसाक, तो फिर पक्का करो बंधनों को, यानी रस्सी से बांध देना, यानी फिर जब खून बहा चुको, जो तुम्हारी तलवार के नीचे आए, फिर उसके बाद अब कोई ये नहीं है कि कोई जज्बात में आके। देखिए ये बहुत एक बड़ा इम्तिहान था, आगे बात आएगी इसकी, क्योंकि मुसलमानों के सामने उनके अपने रिलेटिव्स आ रहे थे, किसी के चचा, किसी का बाप, किसी का बेटा। आप सोचिए, ये आसान बात नहीं थी, और कहा जा रहा हो कि खून बहाना। तो ये अल्लाह का अजाब टूट रहा था उनके ऊपर बदर की सूरत में, याद रखे। तो अच्छी तरह खून बहा लो, अल्लाह का अजाब इनके ऊपर। ये तो छोटा अजाब था, इनके ऊपर बिजलियां नहीं गिर गई, इनके बच्चे बच्चे और औरतें और बूढ़े और सब जैसे आद के खत्म हो गए थे, समूद के खत्म हुए थे, कौमे लूत जैसे खत्म हुए थे, वैसे तो इनके साथ हुआ नहीं, ये तो इनके ऊपर आसान चीज आई थी कि फिर जो खून बहा लो, फशुद्दुल वसाक, फिर पक्का करो बंधन को, यानी फिर आप जब कैदी जो तुम्हें मिले, फिर उसके बाद फौरन कैदी बनाने की ना करो, फिर उसके बाद जो रह जाए उनको कैदी बनाओ और फिर उनको मजबूत बांधो ताकि वो भाग ना सके। फ इम्मा मन्नम बादू, फिर ख्वा एहसान करो इसके बाद, व इम्मा फिदान, या फिदिया ले लो, हत्ता तदाल हरबू औजारहा, यहां तक के जंग अपने हथियार रख दे, यानी अब जब जंग खत्म हो जाए, फिर उसके बाद जो कैदी हैं उनको मजबूती से बांधो। अब उनके साथ क्या मामला करना है, चाहे तो एहसान करो कि उनको फ्री में छोड़ दो, और चाहे उनको फिदिया लेकर आजाद कर दो। तो ये दोनों तरह से आप कर सकते हो, और जब कैद की हालत में भी होंगे तो तब ये नहीं कहा गया कि तब कैद में रख के फिर उनको टॉर्चर करो, फिर उनको साथ बुरा करो। बल्कि आज तो एक सहाबी का ये बाद में इनका ये जो किस्सा एक बात आता है बदर का ही है गालिबन, कि उनके पास जो कैदी था उसने बाद में खुद बयान किया कि ये खुद तो खजूर खाते थे और मुझे रोटी देते थे। मैंने इतना रोटी देना किसी को बड़ी एक डेलिकसी या उस जमाने की एक बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती थी, क्योंकि उनके पास गंदम वगैरह ये चीज़ें नहीं होती थी। तो अपने कैदी को अपने से भी ज़्यादा अच्छा खिलाया, उनको किस तरह से उन्होंने रखा, क्योंकि उस वक्त कोई जेल तो थी नहीं जहाँ पे सारे कैदियों को डाल दिया जाता, सबको किसी किसी के पास दे दिया गया था, कोई अपने पास दो को रखे, कोई चार को रखे, इस तरह से। तो चाहिए तो ऐसे था ना कि भूखा ही रखते, क्या जरूरत थी, ये तो दुश्मन थे। और बदर में आपको पता है फिदिया लेके छोड़ दिया गया था फिर। तो जब जंग खत्म हो तो फिर उसके बाद क्या है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के साथ क्या सलूक होना चाहिए, एहसान करके छोड़ा भी जा सकता है, अल्लाह ने इख्तियार दिया, और चाहे तो उसके फिदिया भी ले लो। ज़ालिका, ये बात, वलौ यशा अल्लाहु लन्तसर मिन्हुम, ये बात यानी ये है हुक्म जो अल्लाह का है जंग के बारे में। वलौ यशा अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह, लन्तसर मिन्हुम, अलबत्ता बदला ले लेता इनसे, यानी अल्लाह चाहता तो खुद ही इनसे बदला ले लेता। ये जैसे मैंने आपसे कहा कि दूसरी कौमों के ऊपर कोई जंगे तो नहीं मुसल्लत हुई, उन कौमों को तो अल्लाह ने क्या एक चीख से ही हलाक कर दिया, वह जहां पड़े थे वहीं पड़े रह गए, घुटनों के बल गिर गए। तो अल्लाह चाहे तो उनसे खुद ही बदला ले ले, अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। वो आंधी आई, अल्लाह ने कैसे उनसे बदला ले लिया, सारे वहीं के वहीं खजूर के तनों की तरह पड़े हुए थे। तो अल्लाह ताला इनसे भी ऐसे कर सकता था, लेकिन वलाकिन लियबलुवा बादकुम बिबादिन, लेकिन ताकि आजमाए तुम में से बाज को बाज के साथ। मुसलमानों को अल्लाह ताला आजमाना चाहता था कुफार के जरिए। ये कुफार को यहां लाकर और उनसे जंग करा के अल्लाह ताला मुसलमानों को टेस्ट करना चाहता था। आजमाइश से ही पता चलता है ना, टेस्ट से पता चलता है कि इंसान किस स्टैंडर्ड का है, उसका स्टैंडर्ड क्या, उसके ईमान का क्या क्या हालात हैं। अच्छे हालात में तो सारे ही कह रहे थे उस मदीना की बस्ती में, हर कोई कह रहा था हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। मुनाफिक भी कह रहे थे, बाकी भी कह रहे थे। पता कैसे चलता कौन सच्चा है अपने ईमान में? जब अल्लाह की तरफ से कॉल आती है तो कौन अपना जान माल सब कुछ लगाने को तैयार खड़ा हो जाता है, और कौन है जो बचाता है अपने आप को? मुनाफिकीन के लिए तो बड़ा ही मसला हो गया था, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते थे वो एक्सपोज हो जाएं, सबके सामने उनका पोल खुल जाए कि हम बच रहे हैं, हम नहीं आना चाह रहे, तो वो इधर उधर हीले बहाने कर रहे हैं। और जो मुसलमान थे उनके लिए भी बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि उनके रिश्तेदार सामने थे। अभी तो हालांकि जंग का भी नहीं जिस वक्त मामला हुआ था, उस वक्त भी सिर्फ काफले को का पीछा करने की जब बात हुई थी तब भी मुनाफिकीन रिलक्टेंट थे, हम कैसे जाएं, हम कैसे करें, हम कैसे आगे हों। अल्लाह ताला इन जंगों के जरिए अल्लाह ताला आजमा रहा था। वल्लदीना कुतिलु फी सबीलिल्लाह, और वो लोग जो मारे गए अल्लाह के रास्ते में, फलाई युदिल्ला आमालहुम, तो हरगिज नहीं जाया करेगा उनके आमाल को। जो शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में वो कोई घाटे में नहीं गए, उनका तो शहीद का तो उसके तो गुनाह माफ कर दिए जाते हैं सिवाय कर्ज के। और ये जो शहीद होता है वो अपने खून का पहला कतरा उसका जमीन पे गिरता है और साथ ही उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला इतनी कदरदानी करता है, उनके आमाल जाया नहीं करेगा, यानी उनका अजर महफूज रखेगा अल्लाह ताला। तो जाहिर है जब जंग होगी तो ऐसा नहीं होगा कि काफरों के ही लोग मरेंगे, ऐसा होगा कि मुसलमानों की तरफ से भी तो कोई लोग होंगे जिनकी जानें चली जाएंगी, तो उनका फिर क्या मामला होगा? क्या वो घाटे में रह गए? नहीं, उनके लिए फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए फिर अल्लाह उनके अमाल को जाया नहीं करेगा। अल्लाह देखो कैसी कदरदानी करेगा उनके अमाल की, सहया हदी हिम, अन करीब वो रहनुमाई करेगा उनकी, हिदायत देगा उनको, वह युसलह बालहुम, और इसलाह कर देगा उनके हाल की। अब वो तो शहीद हो गए, उनकी उनको अल्लाह कैसे रहनुमाई करेगा, कैसे हिदायत देगा? वो तो जा चुके दुनिया से, अब उनको क्या हिदायत चाहिए? हाँ हिदायत चाहिए, हाँ रहनुमाई चाहिए, गाइडेंस चाहिए। कहाँ, देखें मरने के बाद भी मरहले बहुत ज्यादा हैं। मौत का मरहला तो एक है ही, कब्र का मरहला, हशर का मरहला, पुरसिरात का मरहला, मीजान के मरहले, ये सब मरहले ही है ना, हिसाब किताब की स्टेजेस आएंगे। तो बहुत सारे रास्ते को क्रॉस करके फिर कहीं जन्नत में जाना होगा, उस सारे में अल्लाह रहनुमाई करेगा उनकी, और उनको बेहतरीन हाल में रखेगा, उनके हाल की इसलाह कर देगा, यानी उन सारी थ्रू आउट अल्लाह ताला उनका हाल अच्छा करेगा। और जब वो जन्नत में दाखिल होंगे, अच्छे हाल में दाखिल होंगे, उस वक्त उनकी शान ही क्या होगी, सुभान अल्लाह। तो कोई ये ना समझे कि भाई वो उनके साथ लड़के ये इनका नुकसान हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो ये तो फिर घाटे में रह गए, हाय बेचारों ने अपनी जाने ऐसे ही गंवाई। नहीं, उनके लिए देखो अल्लाह ताला आगे क्या करेगा, उनको आखरत के सारे ही मरहले आसान कर देगा। तो मरते तो जो जन्नत में पहुंच जाएंगे, कैसे के वो जो सब परिंदों के कल्ब में उनकी रूहें होंगी और जन्नत में चरते चुगते फिरेंगे, तो और जब कयामत आएगी तो तब भी सारे मरहले आसान है। अल्लाह हू अकबर। वयुदखिलुहुमुल जन्नत, اور وہ داخل کرے گا ان کو جنت میں. عرفہا لہم, پہچان کرا دی اس کی, لہم ان کے لیے, اس جنت کی ان کو پہچان کرا دی گئی جو جس میں ان کو داخل کیا جائے گا. یہ جنت کی پہچان دو طرح سے کرائی گئی. ایک تو جب وہ دنیا میں تھے تو اس وقت جنت کی پہچان کرا دی گئی تھی ان کو, قرآن میں جنت کے حالات کو پڑھتے تھے تو وہ جان گئے تھے کہ ایک جنت ہے اللہ نے تیار کی ہوئی ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے. دوسرا معنی کیا ہے کہ یہ ان کے لیے پہچان کرائی گئی جگہ ہوگی, یعنی جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو وہاں پہ اپنے گھروں کی ایسے پہچان ہوگی جیسے دنیا میں کسی کو اپنے گھر کی پہچان ہو, اس سے بھی زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کو اپنے جنت والے گھر کا اس سے زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا پہچان ہوتی ہے, جتنا اس سے مانوس ہوتا ہے, جتنا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. سبحان اللہ, جیسے انسان کہیں پہ بھی گھوم کے آ جائے, کتنی بھی اچھی جگہ چلا جائے, آخر اپنے گھر پہنچ کے اس کو جو سکون ملتا ہے نا, وہ چاہے وہ گھر ایک کٹیا ہو, جھونپڑی ہو, کچھ چھوٹا ہو بڑا ہو, لیکن کتنی اچھی ویکیشن سے آ جائیں آپ, کہتے ہیں گھر آ کے شکر ہے گھر آ گئے, اسے کہتے ہیں نا شکر ہے گھر پہنچ گئے. تو گھر کی اپنی ایک کمفرٹ کی اور ایک اپنائیت کی فیلنگ ہوتی ہے, ویسا انسان کہیں پہ بھی فیل نہیں کر سکتا. جنت کا جو انسان کا گھر ہوگا, انسان اس سے اس سے بھی زیادہ مانوس ہوگا, اس سے بھی زیادہ اس کو اس کی, ظاہر ہے کہ انسان آدم علیہ السلام جب نکلے تھے جنت سے تو اصل تو انسان کا جو گھر ہے وہ جنت ہی ہے, واپس پہنچ جائیں گے اسی گھر میں. ٹھیک ہے, ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا, تو ہمارا اصلی گھر تو وہی ہے. اصلی گھر پہنچ کے پھر جو قرار آئے گا اور جیسے وہاں پہ پہچان ہوگی, کہ انسان کو بتانا کوئی بتائے گا نہیں یہ ہے تمہارا گھر, وہ اس کو خود پتا ہوگا یہ میرا گھر ہے, اور اسے ایسے مانوس ہوگا, اس کو اسی لیے اچھا لگے گا, اس کو اپنائیت کی جو وہ فیلنگ ہوگی وہ ایسے نہیں لگے گا کہ بس ہاں اچھا یہ میرا گھر ہے. یہ تو جیسے کوئی آپ ہوٹل میں جاتے ہیں تو ایک اجنبی سی جگہ ہوتی ہے, کچھ دیر لگتی ہے مانوس ہونے میں, تو ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں جا کے ایسی فیلنگ ہو. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ان تنصر اللہ, اگر تم مدد کرو گے اللہ کی, ینصرکم, وہ مدد کرے گا تمہاری, ویثبت قدامکم, اور وہ جما دے گا تمہارے قدموں کو. اللہ کی مدد, اللہ تو رب العالمین ہے, اس کو مدد کی کیا ضرورت. پھر یہاں پہ کیوں کہا گیا ان تنصر اللہ, اگر تم مدد کرو گے اللہ کی. یہ آیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ وقرہ میں, کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے, اللہ کو قرض دے کی کیا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ تو تمام خزانوں کا خود مالک ہے, اللہ کو ہم سے قرض مانگنے کی کیا ضرورت. تو بات وہ نہیں ہوتی, بات اصل میں یہ اس کے اندر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اتنی اہمیت دیتے ہیں, اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے مجھے قرض دے رہے ہو تم, کہ اگر تم دین کے کاموں میں لگاؤ گے, اگر تم صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگاؤ گے, تو یہ ایسے ہی ہے اللہ کو قرض دینا. اس کام کو اللہ نے بہت اہمیت دے دی. مسکین کو کھانا کھلانے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. انسان کہے گا اللہ آپ بھوکے تھے, آپ تو رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے دیکھا تھا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. سبحان اللہ, کیا اب یہ اللہ کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اس عمل کی اہمیت کی وجہ سے. وہ اللہ کو کھانا کھلانا تھوڑی, اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے ایسی کمزوریوں سے, ایسی بھوک اور پیاس, لیکن اس کام کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر رکھ کے فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر رکھ کے فرماتے ہیں اے میرے بندے میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ آپ بیمار تھے, آپ تو رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا, تو اس کی عیادت کرتا تو اس کے پاس مجھے پاتا. تو ان کاموں کو اللہ نے اتنی بڑی اہمیت دی. اسی طرح دین کی خدمت کا کام, دین کو پھیلانے کا کام, دین پہ پہلے خود عمل کرنا اور پھر اس کو اس پہ جمنا اور اس کو پھر آگے پھیلانا, اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی کہ فرمایا یہ میری مدد ہے جب تم میرے دین کی مدد کرو گے, تو یہ ایسے ہے جیسے تم اللہ کی مدد کر رہے ہو. सुभान अल्लाह, हालांकि कहां हमारे जैसे कमजोर लोग हैं और कहां अल्लाह की मदद अल्लाह ताला, लेकिन सिर्फ उस काम की अहमियत को कि आपको पता चले ये काम कितना अजीम है, कितना बड़ा है, इस काम की अजमत इससे अंदाजा लगा लें कि अल्लाह ताला ने उसको फरमाया कि मेरी मदद है ये, सुभान अल्लाह। तो अब दीन की मदद क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दीन पे खुद अमल करना, जमना, फिर उसको आगे पहुंचाना। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को यही कहते थे कि अल्लाह के दीन की मदद करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, मन अंसारी अल्लाह, कौन मेरा मददगार है अल्लाह की तरफ, यानी मैं अल्लाह के दीन को गालिब करने में कौन मेरी मदद करेगा। तो उन्होंने कहा था हवारियों ने, नहनु अंसारुल्लाह, हम है अल्लाह के मददगार। तो इस काम को, हक को गालिब करने के लिए कि दीन इस्लाम गालिब हो, दीन इस्लाम छा जाए, ये आगे बढ़े, इसको आगे फैलाना, ये हर मुसलमान का फर्ज है। ये ना सिर्फ उलमा का है, ना हुक्मरानों का है, ना कोई और किसी खास बंदे का है, ये तो सबकी सब का फर्ज है। देखिए हमने अभी पढ़ा कि इत्तबाउल हक में रब्बीहिम, जो ईमान वाले होते हैं वो हक का इत्तेबा करते हैं। हक सिर्फ मान के बैठ जाना कि हाँ ये हक है, हम जान गए इसको, हमने मान लिया, फिर कोई चैन से बैठ सकता है? जिस चीज को आप मान जाए कि हाँ ये चीज सही है, दिल करता है सबको ही बता दे ये बात सही है वो बात गलत है, तो मोमिन तो फिर चैन से बैठ ही नहीं सकता। तो हर एक को अपने लेवल पर, अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपने जितनी उसकी पावर है उसके मुताबिक दीन को पहुंचाने की कोशिश करनी जरूरी है। अपनी अपनी जगह हर कोई अपना किरदार अदा करे। मर्द हैं तो वो घर से बाहर हैं, जा सकते हैं और घर से बाहर काम कर सकते हैं, और वो जहां जाएं किस जिस भी फील्ड में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कहाँ, वहाँ पे अल्लाह के दीन को आगे पहुंचाने की कोशिश करें। अपने ऊपर पहले तो करें, ये नहीं है कि हम दाइये दीन तो बन गए, अपने ऊपर हमारे दीन पहले खुद आया नहीं है। तो दीन का रंग अगर हमें ही नहीं नजर आता तो हमने फैलाना किस चीज़ को है? वो कहेंगे पहले खुद तो कर लो, हमें क्या, तुम सच्चाई का और ईमानदारी का और इसका दर्स देते हो, तुम तो खुद इस तरह के हो। तो पहले तो, सबसे पहले तो तबलीग यही है ना कि हम इंसान अपने ऊपर तो टारी करे उसको, दूसरों के तो हम इसको काबिल समझ रहे हैं कि ये इतनी अच्छी चीज है आप लोग ले लो, मैंने खुद ली नहीं हुई तो क्या मेरे पैगाम के अंदर रह जाएगा। तो अपनी अपनी बिसात में रहते हुए औरतें घरों के अंदर हैं तो वो किस तरह से हक को गालिब करने के लिए कोशिश कर सकती हैं, उसके बारे में सोचें। हम इतना सा सिर्फ करके कि हम नमाज रोजा अपना अपना कर लें, अपनी अपनी जकात दे दी, अपना अपना हज कर लिया, इस तक पे हम काफ़ी नहीं इसको समझ सकते। अपने ऊपर तो करना ही है, फिर अपने घर वालों तक इसको पहुंचाना है, फिर घर वालों से आगे अपने जानने वालों तक, अपने मेल जोल के लोगों तक, अपने दोस्त अहबाब तक, उनको भी तलकीन करनी है, उनको भी बताना है। जहां जहां तक हमारा सर्कल जाता है, जहां तक हम आगे हमारी रीच है, हम जहां तक भी पहुंच सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हैं, चाहे कहीं हैं, वहाँ आगे पहुँचाएं, तब जाके ईमान मुकम्मल होता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा कि मेरे दीन के गलबे के लिए तुमने क्या किया? अपने आप पे दीन को नाफिज किया था, अपने घर वालों तक पहुँचाया था, उनको तलकीन की थी, इर्द गिर्द वालों को बताया था। अब इंसान ईमान का दावा तो करे लेकिन आगे उसको कोई इस चीज की परवाह नहीं है, अपना गलबा तो चाहता है कि मैं ऊपर चला जाऊं, मेरे पास पावर हो जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इतना जमा कर लूं, इतना कमा लूं, इतना खा लूं, इतना बना लूं। लेकिन दीन की कोई फिक्र ना, परवाह ना कुछ, दीन जाए जहां मर्जी, हमारी कोई जिम्मेदारी है इस दीन की? हम खुद मुसलमान हो गए इतना नहीं काफी? इससे नहीं काम बनता। अल्लाह ने पूछ करनी है, मेरे दीन के लिए तुमने क्या किया? क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि आपने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया? कुछ है बताने को आपके पास? बस खुद कर लिया, बस इसके आगे कुछ भी नहीं। اللہ نے آپ کو زبان دی تھی، آنکھیں دی تھیں، کان دیے تھے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کمپیوٹر کی کوئی ٹیکنالوجی کا پتہ ہو، اس میں آپ مہارت رکھتے تھے، اس سے آپ نے کچھ کیا، ہو سکتا ہے آپ کے پاس مال تھا اس کے ذریعے آپ نے کچھ کیا، ہو سکتا ہے آپ لکھنا اچھا جانتے تھے، کئی لوگ بڑی زبردست، مطلب اس کلاس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ، وہ اتنا زبردست لکھتے ہیں کہ ان کی تحریروں کے اندر ایک جیسے واقعی ایک طاقت ہے، تو آپ نے اپنے قلم کے ذریعے کچھ کیا، اپنی زبان کے ذریعے کچھ کیا، آپ نے اپنے عمل کے ذریعے آگے لوگوں کو متاثر کیا، کیا کیا آپ نے؟ کچھ کچھ بھی نہیں بتانے کو، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، یعنی صرف دین کے لیے ٹائم نہیں تھا اور باقی چیزوں کے لیے تو تھا، باقی صرف اپنے بننے سنورنے کے لیے بھی تھا، اپنے بچوں کے لیے بھی تھا، اپنے گھر کے لیے بھی، دین کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا۔ یہ نہیں آپ کو کہہ رہی ہیں، اب یہ کوئی باتیں لے کے الٹی سیدھی نہ کوٹ کرتا رہے کہ ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے، ہم آدھی بات کو سنتے ہیں اپنے مطابق ٹوسٹ کر کے آگے بنا لیتے ہیں کہ جی وہ تو ہمیں سکھاتی ہیں کہ نہ گھر کو دیکھو، نہ بچوں کو دیکھو، نہ شوہر کو دیکھو، بس یہی قرآن پڑھتے رہو، اور دیٹس اٹ، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سکھایا۔ لیکن ہر ایک کا حق ہے، جہاں گھر والوں کا حق ہے، جہاں آپ کے اور رشتہ داروں کا حق ہے، جہاں شوہر اور بچوں کا حق ہے، وہاں اس دین کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ صرف یہ بات بتانی مقصود ہے، یہ نہیں آپ کو کوئی کہہ رہا کہ آپ چھوڑ دیں ہر چیز اور جنگلوں میں نکل کے رہبانیت اختیار کر لیں، یہ کوئی نہیں کہہ رہا، مگر جو نگلیکٹ ہو رہی چیز اسی کا کہا جائے گا نا۔ آپ کی والدہ آپ کو دیکھتی ہیں مثلاً کہ آپ بچوں کو پھینکے چھوڑتی ہیں، تو وہ یہی کہیں گی نا کہ آپ دیکھو اپنے بچوں کا خیال کرو، وہ یہ تھوڑی کہہ رہی ہیں کہ بچوں کا خیال کرنا لیکن شوہر کو چھوڑ دینا، بچوں کا خیال کرنا لیکن ماں کو چھوڑ دینا، بچوں کا خیال کرنا لیکن اپنی اور باقی ذمہ داریاں چھوڑ دینا، یہ نہیں کہہ رہی۔ جو وہاں پہ آپ نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو، اسی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے نا، اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ باقی کوئی حقوق ادا کرنے ہی نہیں ہیں، وہ آپ کے آپ اس سے فارغ ہو گئے۔ جہاں دوسرے حقوق ہیں، اسی طرح اس دین کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، جس نے ہمیں راہ دکھائی ہے، جس نے ہمیں اندھیروں سے نکالا، اس قرآن کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، جہاں اور لوگوں کے حق ہیں، ہمیں سب کے حق یاد رہتے ہیں، ایون یہاں تک کہ ہمیں اپنے دوستوں کے حق یاد ہیں کہ دوست ہے نا کیا کریں، دوست کی بات تو ماننی پڑتی ہے، پھر اس نے کہہ دیا تو اب مجھے کرنا ہے، لیکن اگر نہیں حق یاد تو قرآن کا نہیں یاد، اس دین کا نہیں یاد، جس نے ہمارے ساتھ سب سے بڑی بھلائی کی ہے، جو دین جنت کی طرف لے جانے کا راستہ دکھا دے، اس سے زیادہ بڑی بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ جو ہماری ہمیشہ کی زندگی کو سنوار دے، اس سے بڑی بھلائی کی چیز کیا ہو سکتی؟ کیا پھر اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم اس کو وقت دیں، اس کے لیے بھی کوئی کوشش کریں، اس کو پہنچانے کی بھی آگے کوئی محنت کریں، اس کے لیے بھی اپنا وقت نکالیں، اور جو کرے گا ایسا ینصرکم، یاد رکھو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ نے اس کام کو اتنی بڑی اہمیت دی ہے۔ اگر اللہ آپ کو چن لیتا نا اس کام کے لیے، تو اپنی خوش نصیبی سمجھیے، اور یہ جان لیں کہ پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے کام بکھر گئے، ہمارے کام ہی نہیں ختم ہوتے، آپ اللہ کی مدد شروع کر دیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، آپ اللہ کی مدد شروع کر دیں، آپ کے کام سمٹ جائیں گے، اللہ وہاں سے مدد کرے گا جہاں پہ آپ کو وہم و گمان ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے کام ہوتے کیسے جاتے ہیں، وقت میں برکت کیسے پڑ جاتی ہے۔ یہ آپ جب یہ کام کریں نا، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، کیسے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا، یہ پھر پتہ چلتا ہے اللہ یہ تیری مدد ہے۔ کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اور اللہ کی تعریف میں جتنی بیان کروں کم ہے، کہ سبحان اللہ کوئی چیز میں ڈھونڈ رہی ہوتی کہ اچھا یہ والی چیز ہے، یہ کہاں ہوگی، مجھے بالکل نہیں کوئی یاد ہوتا کہ میں نے کدھر یہ پڑھی تھی یا کیا، تو میں اپنی ایک کتاب ایسے کھولتی ہوں اور سامنے وہ چیز آ جاتی ہے، اور میں دنگ رہ جاتی ہوں کہ یا اللہ، اتنی کتابوں کو میں دیکھتی اور ان کو کھولتی اور ان کے اندر ڈھونڈتی، تو نے کیسے مدد فرمائی، سبحان اللہ۔ اور کوئی کام ایسے اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے واقعی، اگر انسان سچے دل کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے، بے دلی کے ساتھ نہیں، مارے باندھے کی نہیں، شوق کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، तो फिर देखिए कि इस में जो हिस्सा डालने वाला है तो अल्लाह ताला फिर उसको उसके साथ किस तरह से मामला फरमाता है। अल्लाह हू अकबर। और जब आप अल्लाह के दीन के हो जाते हैं तो अल्लाह आपका हो जाता है। वही सब्बे तकदामकुम, और अल्लाह ताला जमा देगा तुम्हारे कदमों को, यानी तुम्हारे कदम भी डगमगाने से अल्लाह ताला महफूज कर देगा। मरते दम तक हमारी ख्वाहिश होती ना, अल्लाह मरते दम तक जमा के रखना हमें, अल्लाह तुम्हें जमा देगा। अगर तुम इस तरह अल्लाह के दीन की मदद करोगे ना तो अल्लाह तुम्हें जमा देगा, अल्लाह तुम्हें साबित रखेगा। सूरह इब्राहिम में हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला साबित रखता है, कब्र में भी साबित रखता है। तो वहां पे भी इंसान कब्र के सवालों जवाब में भी डगमगा सकता है, इसलिए अल्लाह ताला वहां पे भी साबित कदमी देगा, वहां पे भी मदद फरमाएगा। फिर दुनिया में भी मुश्किलात के बावजूद दीन पे चलना आसान अल्लाह ताला फरमा देगा अगर तुम मदद करोगे। और अगर तुम नहीं मदद करोगे तो यकीन करो अल्लाह के दीन को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, अल्लाह के दीन को तो गालिब रहना ही है और गालिब आके रहना है। एक दिन अल्लाह का ये दीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशीन गोई है कि सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का दीन हर कोने कुदरे, हर झोंपड़ी, हर मकान में दाखिल हो के रहेगा, हर जगह पहुंच जाएगा ये दीन, इसने तो पहुंचना है। फिर हमारा तो हिस्सा अगर अल्लाह डलवा दे इसके अंदर तो हमारी खुशनसीबी है, बस ये है। और इस कोशिश के अंदर, इस जमाने में इस कोशिश करते करते अगर हम मर जाएं तो हमारी खुशनसीबी है। चाहे हम देखें ना इसका गलबा, इसको घर घर दाखिल होते हुए हमारी जिंदगी में ये मौका आई ना, लेकिन तब भी हम कम से कम ये कह सकते हैं कि अल्लाह जितनी मैं कोशिश कर सकती थी मैंने कर रखी। आप कमाने के लिए भी तो कोशिश करते हैं ना आप, और अपने आप को संवारने की भी तो कोशिशें करते हैं ना। अगेन मैं ये नहीं किसी को कह रही ना करो ये, लेकिन जैसे हम दूसरी कोशिशें करते हैं, क्या इसके लिए नहीं कोशिश करेंगे? क्या इतनी फालतू चीज़ है जो पड़ी रहे कहीं भी, और करें मैं क्यों करूं? अच्छी चीज़ कोई हो, फायदे की कोई चीज़ हो, जिसमें नफा हो, तो इंसान दौड़ दौड़ के उसको लेता है। ये इतना बड़ा नफा अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह की मदद भी आ जाएगी, तुम्हारे कदम भी जम जाएंगे। क्या ये सौदा कोई नहीं करना चाहता? क्या अल्लाह के दीन की मदद नहीं करना चाहोगे? तो फिर इसके लिए प्लान करो, देखो कि मैं क्या कर सकती हूं। और फिर जब आप ये डिटरमिन कर लो कि आप क्या कर सकते हो, तो पूरी अपनी यानी इखलास के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे दिल लगा के उस काम करो। ये नहीं कि जैसे सर से उतारने वाला, अच्छा अब मैं तो इनका काम कर रही हूं ना, आप उनका कर रहे हो ना, उनका कर रहे हो ना, किसी इदारे का ना, किसी टीचर का ना, किसी लोगों का। याद रखो इस काम को अल्लाह ने फरमा दिया, ये अल्लाह की मदद है। कैसे करोगे आप, कैसे करोगे? अगर इस तरह दिल तंग करके करना है या सर से उतरना है, क्या मुसीबत है, मेरे ऊपर तो इतना काम है, मैं ही ये बस करती रहती हूं, कोई और करता नहीं है। अगर ऐसे करना है तो ये किस किस्म के हम काम कर रहे हैं? इसको बोझ समझ के हर वक्त इसका शोर मचा के, बस मैं तो काम ही बहुत करती हूं, मैं तो काम ही बहुत करती हूं, मेरे पास तो काम ही इतना, ये नहीं तरीका। इसके लिए शौक रखो, जितना आप दिल से कर सकते हो, जितना आप खुशी से कर सकते हो। अल्लाह के कामों को किसी की जरूरत नहीं है, यकीन करो ना, मेरे जैसों की, पता नहीं मेरे जैसे तो कितने आए और कितने चले गए, ना मेरे जैसों की ना किसी और की भी, किसी की हम में से अल्लाह को जरूरत नहीं, हमें जरूरत है। उसके दीन चलता रहेगा, आज तक नहीं चल रहा, 1400 साल से हमको ही चला रहे थे, ये जिंदा है ना, ये दीन चल रहा है ना, और कयामत तक चलता रहेगा ना, जब तक अल्लाह का इज़्ज़न है। तो वो कोई हमारे जैसों के कंधों पे तो नहीं चल रहा होगा। तो हम नहीं अपने आप को इतनी कोई बड़ी चीज समझे कि हमने ही करना है तो होगा या क्या, हम बस ये समझे अल्लाह तूने मुझे मुझे ये ऑनर दिया कि अपने पास नौकरी दे दी मुझे। मैं तो ऐसे ही समझती हूँ, जैसे लोग दुनिया में और जगह उन पर नौकरियां करें ना, मैं अल्लाह की नौकरी कर रही हूँ। वो भी मैं अल्लाह को कहती हूँ, अल्लाह मैं तेरी नौकरी करती हूँ, तूने अब मेरे कामों को संभालना, जैसे लोग कंपनियों में जॉब करते हैं तो वो कंपनी उनको पे करती है, वो उनको गाड़ी देती है, वो उनके घरों को संभालती है, वो उनको हेल्थ बेनिफिट देती है। अल्लाह, सारा मेरा काम तूने करना, मैं तेरी नौकरी करती हूँ। वो अल्लाह से फिर मांगे मान के साथ, जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। ये अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि उन्हें इस पर यकीन आता। क्यों बच बच जाते हो कि मुझे ना कोई काम कह दे, मुझे ना करना पड़ जाए, मेरे पर क्यों डाल दिया, हाय मुझे ही कहते हैं। तो ये तो खुशकिस्मत ही है, जिसको काम मिल गया, अल्लाह ने जिसको चुन लिया ना, इसके लिए वो खुशकिस्मत ही है। इससे हम घबराते हैं, इससे दौड़ते हैं, इससे आंख बचाते हैं, मेरे पर ना किसी की नजर पड़ जाए, मेरा ना नाम ले लिया जाए। और अगर काम मिल जाए तो फिर भी एक मुसीबतों से करना, फिर भी सर से उतारने वाला काम करना। ये क्या अल्लाह के दीन की मदद ऐसे होती है? घर सजाऊं तो मैं बेहतरीन सजाऊं, अपने आप को सजाऊं तो ऐसा सजाऊं कि मेरा दिल करता है वैसा कोई और भी ना लगे, जैसे मैं खूबसूरत लगूं। और अल्लाह के दीन की मदद करने वक्त क्या हाल हो जाता है, तो उसको बिल्कुल ही लो ग्रेड का, बिल्कुल ही ऐसा कि बस सर से उतारने वाला वो काम करना है मैंने, तो नहीं। इसी तरह अल्लाह के दीन की मदद इस तरह हो सकती है जब आप जो अल्लाह के दीन का काम करें उनके बाजू मजबूत करते हैं, जब उनके मददगार बनते हैं, जब आगे काम को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। किसी जगह पर भी आप हिस्सा तो डालें, कहीं तो डालें हिस्सा। खुद नहीं बोल के कर सकते तो कोई बोल रहा है तो उसकी मदद कर दो, मगर अपना हिस्सा डालो ताकि हम कह सकें कि अल्लाह मैंने अपनी कोशिश की थी। कितनी दफा मैंने ये मिसाल दी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो अब वो आग जब जलाई गई तो एक चिड़िया अपनी चोंच के अंदर पानी का कतरा लाती थी और डालती थी, तो किसी ने कहा ए चिड़िया तेरे इतना सा कतरा डालने से क्या फायदा होगा, कोई ये आग बुझ जानी है, इतनी बड़ी आग आसमानों को छू रही थी। उसने कहा मेरी तो चोंच इतनी सी है ना, उसमें इतना सा ही कतरा आता है, कम से कम मैं ये कह सकूंगी कि अल्लाह मेरे पास इतनी चोंच थी, मैंने अपना हिस्सा डाल दिया। तो हमारे पास जितनी बिसात है, हमारी चोंच छोटी सी तो हम छोटा सा ही हिस्सा डालते, ये हमारी छोटी सी कोशिश है। हम कम से कम कुछ तो कह सकें कि अल्लाह इस दौर के अंदर हमने कोशिश की थी, अल्लाह हमने अपना हिस्सा डाल दिया। और दूसरी तरफ जो गोद थी, छिपकली थी, वो फूंके मार रही थी आग को, उसके फूंके मारने से आग ने और नहीं भड़कना था, लेकिन उसने अपना हिस्सा बातिल में डाल दिया। उसने कोशिश की कि आग और भड़के और तेज हो जाए। तो कोई लोग अपना हिस्सा बातिल में डालते हैं और कोई हक में डालते हैं। तो अगर हम चाहते हैं हमारे कदम जम जाएं, अल्लाह हम खुद इस रास्ते पर जमे रहे, हमें अगर फिक्र रहती है हर वक्त कि अल्लाह हम लड़खड़ा ना जाएं, अल्लाह मरते दम तक कायम रखना, तो फिर मदद करो अल्लाह की, तब तुम भी कायम रहोगे। और ऐसा होता है वाकई, वरना इंसान अकेला रह जाएगा। अगर ये काम नहीं करोगे तो अकेले रह जाओगे, फिर खुद भी डगमगाने लगोगे। तो इतना काफी मत समझो कि हम मुसलमान हैं। सूरह सफ में ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह के मददगार बन जाओ। अपने आप को सिर्फ ये नहीं, मैं बस मुसलमान हूं, मेरे से क्या होगा, मैं क्या कर सकती हूं, मेरा तो नहीं जिम्मेदारी, नहीं, मददगार बनो। वल्लदीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, कुफर, अब यहां पे कुफर का माना पिछली आयत के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, पिछली आयत में आया कि अंसारुल्लाह बन जाओ, और यहाँ पे जिन्होंने कुफर किया, नहीं, जिन्होंने इस बात को नहीं माना, जिन्होंने इनकार किया इस बात से, अंसारुल्लाह बनने से इनकार कर दिया, हम नहीं बनते, हमसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते। फतासल्लाहुम, बस तबाही है उनके लिए। वह अदल्ला आमालहुम, और उसने भटका दिया उनके आमाल को, गुम कर दिया उनके आमाल को। ये खास तौर पे तो मुनाफिकीन के लिए ऐसी बात है कि वो लोग थे जो कहते थे कि ये, वो तो उल्टा इस नूर को बुझाने की कोशिशों में लगे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लगे हुए थे। दूसरे काफिर भी हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला ही मुखालफत की, साथ नहीं दिया, लेकिन जो लोग इस हुक्म का इनकार भी करते हैं, उल्टा बातिल में अपना आ, 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 हिस्सा डालते हैं। वो तासन, मैंने इसका लफ्जी मतलब बताया, वो ऐसी ठोकर जो खाना के जो उठ ही ना सकना, वो उनका ये हाल हो जाता है। तो फिर वाकई तुम दीन की मदद नहीं करोगे तो फिर ऐसा जवाल आएगा, अगर सारे ये सोचते रहे फलाना करे ना हमें क्या, फलां करे ना हमें क्या, हमें कौन सा कुछ आता है। आए तो ये हाल है हमारे बस्ती का कि हम इवन अपनी औलाद को भी खुद कुरान नहीं पढ़ा सकते, हमारे खुद ही नहीं सही है, हम खुद इतनी, हमने खुद नहीं आज तक सही सीखे। वो फलानी जगह भेज देते हैं, उस आपा जी के पास, उस उनके पास, उन खाला जी के पास, कहीं से भी पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ा सकती क्यों, मुझे आता ही नहीं। आज तो ये हाल है, अब यह जवाल ही है ना कि अपनी किताब को भी नहीं हम पढ़ सकते, नमाज नहीं लोगों को सही आती, कुरान का ही पता नहीं है। तो अपनी अपनी जगह सब मदद करें, कोई किसी को पकड़ ले, आपने दो आयतें पढ़ी हुई हैं उनको ही आप आगे पहुंचा दें, उनको ही आप समझा दें, किसी को कलमे को समझा दें, कुल हो अल्लाह याद करा दें, किसी को सीरत पढ़ी है उसका कोई वाक्य बता दें, कुछ तो करो। अगर नहीं तुम करोगे ना फिर पस्ती में जा गिरो कि जहां पे सिर्फ हलाकत मुकद्दर बन जाएगी और कुछ नहीं होगा। और आज देखें हाल, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ है, लेकिन हाल इस हाल पे हम पहुंचे क्यों, क्योंकि पहले से काम नहीं हो रहा था, इसलिए आज ये वक्त आया। आप पिछली सेंचुरी के अंदर देख लें, बिल्कुल जहालत, बिल्कुल ना औरतें पढ़ी लिखी, ना उनको कोई दीन का पता, इवन अपनी नमाज कुरान का नहीं पता। कितने लोगों के जिनकी नानियां परदादियां परनानियां पढ़ी लिखी और कुरान को सही समझने वाली थी, कितने लोग होंगे, कितनों की माएं सही समझने वाली। ये तो अब थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाग रहे हैं, अभी भी बहुत जरूरत है काम की, बहुत जरूरत है, लेकिन पिछले काम पिछले अरसे में काम नहीं हुआ तो आज तक देखो हमारा हाल क्या चल रहा है। इसीलिए घर घर आदमी वो हैं कि जो अपनी बीवियों को भी मना करते हैं कि कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या करना है तुमने पढ़ के, वो कहते जॉब कर लो, कुरान की क्या जरूरत है, इसे क्या मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, इससे जॉब करोगी कुछ लाओगी तो सही घर में। आज ये सोच हो गई, ये यहां तक हम पहुंचे कैसे, कभी आपने सोचा, इसलिए कि पिछली जनरेशन से काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, इसलिए आज तक ये मौका आ गया कि घर में आदमी है और वो कहते हैं कि औरतों को कि तुम हिजाब ना लो, वो कहते हैं कि इस पर्दे की कोई जरूरत नहीं। इसलिए आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, मर्द नहीं है वहां पे, खूबसूरत मस्जिदें बनी हुई हैं, नमाजी नहीं। तो इसका कोई वजह है ना, कभी ढूंढनी चाहिए इसकी वजह, क्या है वजह, पीछे देखो, नेग्लिजेंस हुई है, ये काम नहीं हुआ, इसलिए आज ये मौका आया। और इसके असरात आते हैं फिर आगे, आके फिर हलाकत है। फिर आज ऐसे ही हम जो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो जाके दूसरों से मुतासिर हो रहे हैं, वो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, रहम फरमाए, अपने ही दीन के ऊपर तान कर रहे हैं, अपने ही दीन में कीड़े निकाल रहे हैं, अपने ही दीन के ऊपर बुराइयां कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं हुआ, कसूर हुए हैं तो ये आज दिन आया है। और इंशाल्लाह अगर आज से हम कोशिशें करेंगे ना तो आप देखेंगे अगली नस्लों के अंदर इन कोशिशों का फल आएगा, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी। जनरेशन बदलती हैं, हर 25 साल बाद अगली जनरेशन है, आप देखेंगे ये माएं मेहनत करेंगी तो अगली जनरेशन में असर आएगा, कुछ ना कुछ उठेगी उम्मत। लेकिन अगर इसी तरह पड़े रहे तो जवाल पे जवाल है आगे, आपके अपने घरों में से बच्चे छोड़ छोड़ के दीन जा रहे हैं, और क्या क्या कहूं मैं इससे आगे, एथीस्ट हो रहे हैं, कहानियां तो सुनो लोगों की। तो इसकी कोई वजह है क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं सोचते कि ये नॉट ओनली एक घर की कहानी नहीं है, ये एक लार्ज स्केल की कहानी है। जब माशरों के अंदर ऐसे होने लगे, बेगमात अपने आप को संवार रही हैं, अपने बैठी हुई हैं सारा दिन, और डिश एंटी ने, और वो क्या डिश तो आप पता नहीं है नहीं, दूसरी जो भी केबल या चीज़ें चल रही हैं उन पर सारा सारा दिन वो इंडियन ड्रामे चल रहे हैं, और वो देख देख के सारा दिन फिल्में चल रही हैं, और इंटरनेट है और फेसबुक है और फलां, बस ये एक्टिविटीज़ अगर हमारी रह गई हैं, और शॉपिंग है, और उसके बाद फिर घर आना, फिर नौकरों ने खाना लगाया हुआ, फिर वो खा के फिर और सो जाना, फिर उठ जाना, ये क्या जिंदगी है? तभी तो ये जवाल आए हैं आज। अपने आप को कसूरवार कहो कि हमसे कसूर हुआ है, हमारी पिछली नस्लों से कसूर हुआ है। कहां पे औरतों को पढ़ाया जाता था? कुछ कहीं पे भी नहीं। जब माएं जाहिल थी तो आगे वो क्या देती औलादों को? जब माओं को समझ नहीं थी तो वो आगे क्या पढ़ाती? तो फिर आगे आज बेटे भी और बेटियां भी वैसे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर उठ रहे हैं और औरतों के अंदर शऊर आ रहा है, तो देखें एक शहद की मक्खी भी जो होती है ना, फीमेल होती है जो कि वो छत्ते में लाके शहद जमा करती है और बनाती है, आज की औरत अगर दीन के समझ ले लेगी तो वही वो काम कर सकती है जो शायद मर्दों में ने भी नहीं किया। तो औरतें ही समझ कर लें, आज उठने की ज़रूरत है इस उम्मत को, और अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। अल्लाह की मदद करोगे वो तुम अपनी मदद कर रहे हो, अपने दीन को खुद बचा रहे हो। अल्लाह ताला इसीलिए फरमाते हैं तुम्हारे कदम जम जाएंगे, क्योंकि तुम अपने आप को बचा लोगे, अपनी नस्लों को बचा लोगे। जब ईमान को बचा लेना तो अपने आप को बचा लेना, और ईमान ही ना बचा तो क्या रह जाएगा? तो आज तो ईमान के लाले पड़ गए हैं, फिर भी नहीं होश करोगे, फिर भी नहीं समझोगे कि कितनी ज़रूरत है। और अपने अपने घर को बचा लेना काफ़ी नहीं है? हम सोच रहे हैं मेरे घर में तो सब ठीक है ना, मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक है, नहीं, ये काफ़ी नहीं है। इसलिए कि आप और के बच्चे, ये जो आग फैली हुई है वो आगे फैल रही है, वो आगे जा रही है। अगर इस आग को आज आपने यहीं नहीं रोका तो नुकसान होगा, ये घरों तक पहुंच जाएगी, ये आपके घर तक पहुंच सकती है। अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन जो आज हालात हैं वो कोई ज़्यादा इतने पॉजिटिव नहीं है। हमें जितनी मेहनत है उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, ये बात इस वजह से है कि इन्होंने कराहत की, नापसंद किया उसको जो अल्लाह ने नाजिल किया। فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, तो अल्लाह ने उनके आमाल को ज़ाया कर दिया। ये इस वजह से इनके साथ हुआ है कि इन्होंने जो अल्लाह ने नाजिल किया, कुरान का जो जो उसके अहकामात हैं उनको इन्होंने नापसंद किया। और ये इससे क्या नतीजा निकलता है? जब कोई कुरान के अहकामात को नापसंद करे, अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहा है ना कि क्यों उनके आमाल ज़ाया कर दिए, चाहे आमाल अच्छे हों, चाहे नेक बड़े जिनको हम कहते हैं बड़े नेक आमाल हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा चैरिटी वर्क है, बड़ा ऐसे, वो कबूल क्यों नहीं होता? इसलिए कि जब अल्लाह का कलाम पसंद ना आए, जब ये इससे दिल में तंगी पैदा होने लगे, जब ना पसंद आने लगे ये, तो फिर आमाल ज़ाया हो जाते हैं। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि किसने अमल किया किसने नहीं अमल किया। कराहत करना ना अल्लाह के अहकामात से, ये तबाह कर देता है आमाल को। तो बस आपको पता है कि काम ऐसे होते हैं कि जो नेकियों को, इवन नेकियों को, इवन चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे वो, उनको भी इतने वो ख़तरनाक होते ना, वो उनको भी ज़ाया कर देते हैं। जैसे जहर का एक कतरा, जहर का एक कतरा पूरी आप देग में डाल दें, वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। इसी तरह कुछ आमाल इतने जहरीले होते हैं, और ये अमल भी इतना ही जहरीला है कि कोई ऐसा रिएक्ट करे अल्लाह के हुक्म के आगे। अल्लाह ताला कोई हुक्म दे रहा है, अल्लाह ताला कोई बात कर रहा है, और वो कह रहा है मुझे पसंद ही नहीं आ रही, ऐसा क्या हो गया, ये क्यों ऐसे किया, ये क्यों मना किया गया, आए अब ये भी मना कर दिया हमें, दिल में तंगी आए, मेरा तो दिल ही नहीं मानता। मुझे तो ये नहीं पसंद आया, ये बात नहीं मुझे पसंद आई, ये बात कहना या ये ऐसा करना इंसान के अमाल को जाया कर देता है। आप देखें, आपका बच्चा, अगर आपका बच्चा है, छोटा सा बच्चा, आपकी किसी बात को कहे, आप बड़ी विजडम की बात करें और वो कहे कि आपकी बात तो मुझे तो नहीं पसंद आई, आपकी बात तो बिल्कुल गलत है, आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा फील होगा? आप छोटे से बच्चे की बात को, चाहे हो सकता है उसकी बात सही हो, क्योंकि हम तो खुद नाकिसुल अकल है, हो सकता है हमारी बात वाकई गलत हो, लेकिन फील कैसा होगा? तो यहां पे तो चांस है कि हमारी, हो सकता है बात गलत हो, अल्लाह की तो कोई बात गलत नहीं, उसकी तो हर बात हिकमत पे मबनी, उसकी तो हर बात हक है, उसका तो अपना नाम है अल हक। उसकी बात के ऊपर कोई कराहत करे कि मुझे नहीं अच्छी लगी, ये नहीं सही है, ये बात बस वैसे सही नहीं है, ये इंसान के अमल को जाया कर देती है। अब तुम्हारी नेकियां भी खत्म। अफलम यसीरू फिल अर्दी फयंदरू कैफ कान आकिबतुल्लदीना मिन कबलिहिम, क्या फिर नहीं वो जमीन में चले फिरे, देखते तो सही क्या अंजाम हुआ इनसे पहले लोगों का। दम्मर अल्लाहु अलैहिम, हलाकत डाल दी अल्लाह ने उन पर। वलिल काफिरीना अम्सालुहा, और काफरों के लिए इसकी मिसालें हैं, ये काफरों के लिए ये एक मिसाल है कि पिछले काफरों के साथ कैसे हुआ, वैसे ही तुम्हारे साथ भी हो सकता, और जंगे बदर में हुआ, और यहां पे बताया गया कुरैश मक्का को, तो बताया गया हर आने वाली कौम के लिए, ये एक वार्निंग समझ लें कि तुम जरा चल फिर के देखो जमीन में, देखो कैसा अंजाम हुआ जो पहले लोग आए थे, कितनी बड़ी बड़ी कौमें थीं, कैसे खंडर बन गए, आज वो मिसाल हैं तबाही का, वीरानी का, वहशत का, यहाँ पे कभी कोई बसा करते थे, उनके आसार बता रहे हैं कि वो बड़ी सिविलाइज्ड कौमें थीं, कई उन्होंने खोदी हैं, खुदाइयाँ की, तो कई आसार ऐसी कौमों के भी निकले हैं जिनके पास व्हील भी होता था, उन्होंने उस वक्त इसको इन्वेंट कर लिया था पहिए को, जिसका मतलब है कि उनके पास ऐसी सवारियां थी, ऐसी चीजें थी, उनसे वो काम लेते थे, टॉयलेट्स बने में बाकायदा, हजारों साल पहले की तहजीबें ये, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा वगैरह, तो टॉयलेट्स बने में, और इस तरह की चीजें पता चलता है कि ये ऐसे नहीं था कि छोटी कोई मामूली सी कौमें, बेअकल सी लोग थे, पुराने जो थे इसलिए बेअकल थे, तो हम सोचते हैं कि वो पुराने होने का मतलब है कि उनको अकल ही नहीं थी, हमसे ज्यादा तो कोई सिविलाइज्ड और एजुकेटेड और एडवांस नहीं है, हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में खुद फरमाया लम युखलक मिस्लु हाफिल बिलाद, आद के बारे में पिछली दफा भी बात हुई थी कि उन जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जैसे वो थे, और वो उनको गुजरे हुए भी हजारों साल हो गए, 5,000 तो हो ही गए, तो ये मिसाल है, समझो इन मिसालों से। ज़ालिका भी अन्नल्लाह मौलल्लदीना आमनू, इनको क्यों ऐसे हलाक किया गया, इसलिए कि बेशक अल्लाह ताला मददगार है उनका जो ईमान लाए, वअन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, और काफरों का तो कोई मददगार नहीं, इनका कोई मददगार नहीं है जो काफिर है, इसीलिए देखो कैसे तबाह कर दिए गए, और काफरों के लिए सबसे बड़ी हसरत का मकाम ही ये है, उनका मददगार कोई भी नहीं, और मोमिन के लिए सबसे बड़ी ताकत ये है कि उसका मददगार अल्लाह है। अबू सुफियान जब ओहद में वापस जा रहा था अपने लश्कर को लेकर, तो जाने से पहले ओहद पे नमूदार हुआ और बुलंद आवाज से बोला, क्या तुम में मुहम्मद हैं? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की भी अफवाह फैल चुकी थी ना, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने फिर कहा, क्या तुम में अबू कहाफा का बेटा है, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि जवाब मत देना, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा कि क्या तुम में उमर बिन खत्ताब है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कोई जवाब ना दे, तो उसने फिर किसी ने जवाब नहीं दिया। अब अबू सुफियान ने कहा चलो तीनों से तो फुर्सत मिल गई। ये सुन के हजरत उमर बेकाबू हो गए, बोले अल्लाह के दुश्मन जिनका तूने नाम लिया वो सब जिंदा हैं, अभी अल्लाह ने तेरी रुसवाई का सामान बाकी रखा हुआ है, यानी अभी हम तुझे रुसवा करेंगे। अबू सुफियान ने कहा तुम्हारे मकतूलीन का मुसला किया गया, लेकिन मैंने इसका हुक्म नहीं दिया था, ना ही मैंने बुरा मनाया। फिर नारा लगाया औलू हुबल हुबल बुलंदो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया तुम उसको जवाब क्यों नहीं देते। सहाबा ने पूछा हम क्या जवाब दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ये कहो अल्लाह ही सबसे बुलंद है और बुजुर्ग बरतर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब सिखाया अल्लाह आला व अजल। अब हुबल जो था ना वो बड़ा बुत था काबे के सामने जो था। अबू सुफियान ने फिर नारा लगाया लनल उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे लिए तो उज्जा है तुम्हारे लिए कोई उज्जा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको जवाब दो। जो जवाब दिया ना वो ऐसा है कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना खूबसूरत जवाब है ये। आपने फरमाया कि तुम कहो, और सहाबा ने ये कहा अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है तुम्हारा कोई मौला नहीं है। ये है मोमिन की स्ट्रेंथ। हमेशा ये बात याद रखें, काफिर के पास वो चाहे बीमार है, वो चाहे मुसीबत में है, वो चाहे शिकस्त खा रहा है, वो चाहे कहीं पे भी डाउनफॉल का शिकार है, उसके पास कोई है नहीं जिसका वो सहारा पकड़े, और हमारे पास अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है तुम्हारा कोई मौला नहीं। इंसान बीमार है तो वो कहता है अल्लाहु मौलाना, मेरे पास अल्लाह तो है ना, वो है मेरा मददगार, मैं कुछ भी मैं कितनी भी मुश्किल के अंदर हूं मेरा अल्लाह है ना मेरे साथ। उसके पास ये कहने को नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके हाथ खाली हैं। आप अस्पतालों में देखें लोग पड़े होते हैं बीमार हैं, उनके पास कोई नहीं है जिसको वो बयान कर सके, और मुसलमान के पास मोमिन के पास कौन है, उसका अल्लाह है। उसको पता है मेरी तकलीफ भी है तो अल्लाह इससे मेरे गुनाहों को झाड़ रहा है, उसको पता है इसके लिए जरिए मेरे दर्जे बुलंद हो रहे हैं, उसको पता है मेरा अल्लाह जो मेरी बात सुन रहा है, मेरा अल्लाह जो मेरे से करीब है, मेरा अल्लाह है जो मेरा मुश्किल कुशा है, वो अला कुल्ली शैन कदीर है, वो मुझे इससे निकाल सकता है। दूसरे के पास तो ये ईमान ही नहीं है, वो किसको पुकारे, वो किससे कहे, वो किससे बात करे। सुभान अल्लाह, दिस इज योर स्ट्रेंथ के अल्लाहु मौलाना वला मौला लक, उनका कोई मौला नहीं, हमारा मौला अल्लाह है। हम कितनी भी बड़ी दुश्मन हमसे कितना ही बुरा का इरादा करे, अल्लाहु मौलाना, अल्लाह है ना हमारा मौला। हमें अपनी ताकत पे भी भरोसा नहीं, हमें किसी और के ऊपर भी नहीं भरोसा, अल्लाह है हमारा मददगार, हमें उस पे भरोसा है। सुभान अल्लाह। तो ये बहुत प्यारी बात थी, ये बहुत बड़ा नारा था जो मुसलमानों ने फिर लगाया कि अल्लाहु मौलाना। यहां तक तिलावत सुने फिर आगे चले या क्या? बीच में मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें तिलावत लगानी चाहिए ताकि आप लोग भी इन आयात को जज़्ब भी करें, थोड़ी सी आपको ब्रेक भी मिल जाए। तो चलें यहाँ तक लगाइए तिलावत, फिर आगे चलते हैं।
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم